आगे सबक देखिए भाई, वलविश्तरा उम्म वलदिहि लम युजज़िहु व माना हादिहिल मसअलति अन यकूल लि अमतिन कद इस्तौलदहा बिन निकाह इन इश्तरैतुकि फअंत हुर्रतुन अन कफारति यमीनी सुम्मा इश्तराहा फइन्नहा तातिकु लिवुजूदि शर्त वला युजज़िहु अनिल कफारा। भाई गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको मसला बतलाया था कि अगर एक शख्स ये कहता है कि अगर मैंने फला आदमी से बात की, मसलन अमर के बारे में कहता है कि अगर मैंने अमर से बात की जैद के आने से पहले या जैद की इजाजत के बगैर, तो मेरी बीवी को तलाक है, तो इस सूरत में यह कसम मुनाकिद हो गई। अगर यह शख्स जैद के आने से पहले या जैद की इजाजत के बगैर अमर से बात करेगा तो हानिस हो जाएगा और इसकी बीवी को तलाक हो जाएगी, और अगर इस शख्स ने जैद के आने के बाद या जैद की इजाजत के बाद अमर से कलाम किया तो फिर हानिस नहीं होगा, और अगर जैद का इंतकाल हो गया तो फिर इस सूरत में तारफेन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि ये यमीन ही साकित हो जाएगी, यमीन ही साकित हो जाएगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि अगर जैद का इंतकाल हो गया, यानी जिसके आने की या जिसकी इजाजत की शर्त लगाई थी, अगर उसका इंतकाल हो गया तो फिर ये यमीन मुअब्बद हो जाएगी। तरफेन फरमाते हैं कि नहीं, यमीन साकित हो जाएगी। तरफेन की दलील यह है कि यह जो कसम है यह मना के लिए खाई जाती है, एक काम से रोकने के लिए, तो यहां पर यह कसम रोक रही है अमर के साथ कलाम करने से, तो अमर के साथ कलाम ममनू अनहू है, लेकिन यह ऐसा ममनू अनहू है जिसकी गाया उसने जिक्र की है कि यह कलाम उस वक्त तक ममनू अनहू है यहां तक कि जैद आ जाए या जैद इजाजत दे दे। तो मालूम हुआ इस कसम के जरिए अमर के साथ कलाम ममनू है, लेकिन यह ऐसा ममनू कलाम है कि इस मुमानियत की इंतहा हो रही है जैद के आने पर या जैद की इजाजत पर, और जब जैद का इंतकाल हो गया तो अब उसके बाद ऐसा ममनू कलाम कि जिसकी इंतहा जैद की इजाजत पर या जैद के आने पर हो रही हो, उसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। जब जैद का इंतकाल हो गया तो मुतलक ममनू कलाम का तो तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ममनू कलाम कि जिसकी इंतहा हो रही हो जैद के आने या इजाजत पर, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैद का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा इस मुमानियत की इंतहा जैद की इजाजत या आने पर अब नहीं हो सकती। भाई तो जैद का जब इंतकाल हो गया तो ऐसा ममनू अनहू कलाम कि जिसकी इंतहा जैद के आने पर या जैद की इजाजत पर हो रही हो, उसका तसव्वुर ही नहीं हो सकता, लिहाजा कसम ही साकित हो गई। कसम तो थी ही किस लिए? ऐसे कलाम को मना करने के लिए जिसकी इंतहा हो रही हो जैद के आने पर या उसकी इजाजत पर, और अब ऐसा ममनू अनहू कलाम मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा कसम ही साकित हो गई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस तरह के कलाम का तसव्वुर करना यह कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक तो यमीन के मुनाकिद होने के लिए या उसकी बका के लिए उसका पूरा करना मुमकिन हो यह शर्त ही नहीं है। तो यहां पर भी वो फरमाते हैं कि इस तरह के कलाम का तसव्वुर करना यह इस यमीन के लिए शर्त नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा यहां यह होगा कि इस मुमानियत की इंतहा हो रही थी जैद के आने पर या जैद की इजाजत पर, तो जब जैद का इंतकाल हो गया तो अब इस मुमानियत की इंतहा नहीं हो सकती, लिहाजा अब अमर के साथ कलाम हमें के लिए ममनू हो गया, तो ये यमीन मुअब्बद बन गई। बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं फुलां के गुलाम से या फुलां की बीवी से या फुलां के दोस्त से बात नहीं करूंगा। मसलन जैद है, एक आदमी ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं जैद के गुलाम से बात नहीं करूंगा, या जैद की बीवी से बात नहीं करूंगा, या जैद के दोस्त से बात नहीं करूंगा, तो फिर इस सूरत में देखो इसने गुलाम, बीवी और दोस्त इनकी निस्बत की है जैद की तरफ, इनकी इजाफत की है जैद की तरफ। तो जब तक ये इजाफत मौजूद है तब तक इनसे बात करेगा तो हानिस हो जाएगा, और जब ये इजाफत खत्म हो जाएगी तो फिर बात करेगा तो हानिस नहीं होगा। मसलन जैद ने इस गुलाम को बेच दिया तो अब यह जैद का गुलाम ना रहा, या जैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसने इद्दत गुजार ली और वह जैद से जुदा हो गई तो अब यह जैद की बीवी ना रही, या इसी तरह जैद की दोस्त के साथ मुखालफत आ गई तो अब वह जैद का दोस्त ना रहा। तो इन तमाम सूरतों में अब वह निस्बत खत्म हो चुकी है जो जैद की तरफ हो रही थी, तो लिहाजा अब इस गुलाम से या जैद की उस साबका बीवी से या जैद के वह साबका दोस्त से बात करेगा तो यह शख्स हानिस नहीं होगा। जबकि साहिब हिदाया ने बतलाया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह बीवी और दोस्त के मसले के अंदर इख्तिलाफ करते हैं। वो फरमाते हैं कि गुलाम का मसला तो इसी तरह है कि जब तक उसकी निस्बत आका की तरफ है, जब तक वो आका का ममलूक है उससे बात करेगा तो हानिस हो जाएगा, लेकिन बीवी और दोस्त वो तो खुद मकसूद हैं इस छोड़ने के जरिए, और जो इनकी निस्बत की थी जैद की तरफ वो सिर्फ पहचान के लिए थी। जैद की बीवी ये सिर्फ उसकी पहचान के लिए था, या जैद का दोस्त ये सिर्फ पहचान के लिए था, तो लिहाजा यहां इस बीवी या दोस्त की जात मुराद होगी, बीवी या दोस्त की जात मुराद होगी, लिहाजा इजाफत खत्म भी हो जाए, ताल्लुक खत्म भी हो जाए, फिर भी इनके साथ बात करेगा तो यह शख्स हानिस हो जाएगा, जबकि शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि हानिस नहीं होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर इजाफत के साथ साथ इशारा भी किया यानी तायीन भी कर दी कि वल्लाह मैं जैद के इस गुलाम के साथ बात नहीं करूंगा, या मैं जैद की इस बीवी के साथ बात नहीं करूंगा, या मैं जैद के इस दोस्त के साथ बात नहीं करूंगा, अब देखो इजाफत भी कर रहा है और इशारा भी कर रहा है, तो इस सूरत में याद रखो इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि यहां पर जब इजाफत के साथ इशारा आ गया तो इशारे का एतबार किया जाएगा इजाफत का नहीं, इसलिए क्योंकि इजाफत भी पहचान का काम देती है और इशारा भी पहचान का काम देता है, लेकिन इशारा पहचान में बढ़कर है क्योंकि इशारा जो है वो शिरकत को खत्म कर देता है जबकि इजाफत जो है वो शिरकत को खत्म नहीं करती, तो यहां पर इजाफत मोतबर नहीं होगी सिर्फ इशारा मोतबर होगा, और इशारे के जरिए तो जात मुतायन हो जाती है, लिहाजा ये गुलाम, ये बीवी या ये दोस्त इनकी वो इजाफत तो खत्म भी हो जाए तो फिर भी इनके साथ बात करेगा तो हानिस हो जाएगा क्योंकि इशारे की वजह से इनकी जात मुतायन हो गई थी। बात समझ में आ गई? तो इमाम जुफर और इमाम मोहम्मद रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि चाहे गुलाम हो या इसी तरह की कसम घर या सवारी या कपड़े के बारे में खा ले कि मसलन जैद का ये जो कपड़ा है वल्लाह मैं ये कभी नहीं पहनूंगा, या जैद की ये जो सवारी है वल्लाह मैं इस पर कभी सवार नहीं होऊंगा, या जैद का ये जो घर है वल्लाह इसमें मैं दाखिल नहीं होऊंगा, तो इस सूरत में चूंकि इशारा पाया गया लिहाजा यही चीजें मुतायन हो गई, तो जैद अगर इनको बेच भी दे फिर भी ये ही मुतायन है उस कसम के लिए, लिहाजा ये उस कपड़े को पहनेगा या उस सवारी पर सवार होगा या उस घर में जाएगा, चाहे जैद इनको बेच चुका है फिर भी हानिस हो जाएगा। जबकि शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि यहां पर ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको वैसे नहीं छोड़ा जाता बल्कि इनके मालिक की वजह से छोड़ा जाता है, लिहाजा यहां भी इस कसम का दारोमदार इस इजाफत पर होगा, जब तक ये इजाफत है तो ये उस चीज को इस्तेमाल करेगा या उस घर के अंदर जाएगा तो हानिस हो जाएगा, और जब वो मालिक इन चीजों को बेच दे फिर ये उस घर के अंदर जाए या उस सवारी पर बैठे या उस कपड़े को पहने तो फिर हानिस नहीं होगा। जबकि बीवी और दोस्त का मसला ऐसा नहीं, वहां इशारा कर दिया तो वही जात मुतायन हो गई, लिहाजा वो इजाफत और ताल्लुक रहे या ताल्लुक न रहे, चाहे जैद उस बीवी को तलाक दे दे, चाहे जैद की उस दोस्त से दुश्मनी ही क्यों ना आ जाए, फिर भी उनकी जात मुतायन हो चुकी है उस यमीन के लिए, लिहाजा उनका जैद से ताल्लुक खत्म होने के बाद भी बातचीत करेगा तो यह शख्स हानिस हो जाएगा भाई। और इसी तरह अगर एक शख्स कसम खाता है कि वल्लाह मैं इस चादर वाले से बात नहीं करूंगा, और फिर उस शख्स ने अपनी चादर बेच दी और इसने फिर उसके बाद उससे बात की, तो हानिस हो जाएगा भाई, हानिस होगा। वजह यह कि चादर की वजह से किसी इंसान की मुखालफत नहीं की जाती, उसको छोड़ा नहीं जाता। उसके बाद साहिबे हिदाया ने आपको मसाला बतलाया कि एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह वो किसी फुलां से बात नहीं करेगा, और हीन या जमान का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं उससे एक वक्त तक या एक जमाने तक बात नहीं करूंगा। तो हीन और जमान का लफ्ज इस्तेमाल किया, चाहे नकेरा इस्तेमाल करे चाहे मारिफा इस्तेमाल करे, अगर इस कसम खाने वाले ने कोई नियत नहीं की तो यह कसम महमूल होगी 6 महीने पर। 6 महीने के अंदर बात की तो हानिस हो जाएगा, 6 माह के बाद बात की तो हानिस नहीं होगा। वजह यह कि जो हीन का लफ्ज है इसके जरिए कलील जमाना भी मुराद होता है, इसके जरिए तवील जमाना भी मुराद होता है, और इसके जरिए मुतवस्सित दर्जे का जमाना भी मुराद होता है। कभी हीन के जरिए कलील जमाना मुराद होता है, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फसुबहान अल्लाह हीन तुम सुन व हीन तुस्बिहून, कि तुम अल्लाह की पाकी बयान करो यानी नमाज पढ़ो जब तुम शाम करो और जिस वक्त तुम सुबह करो। तो यहां हीन से मुराद इन नमाजों के औकात हैं, और आप जानते हैं नमाज का वक्त तो थोड़ा सा होता है। और इसी तरह हीन कभी तवील मुद्दत के लिए भी आता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हल अता अलल इंसान हीन मिन दहरी, मैंने आपको बतलाया था कि ये जो हल यहां आया है ये बमाने कद के है, और ये जो अल इंसान आया मुफसरीन हजरात फरमाते हैं कि इसे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं हल अता अलल इंसान हीन मिन दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि तहकीक इंसान पर एक जमाना ऐसा भी आया है कि वो कोई काबिले जिक्र चीज ना था। मुफसरीन फरमाते हैं इससे वो जमाना मुराद है जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और फिर 40 साल तक वो ऐसे ही पड़े रहे, 40 साल के बाद उनमें रूह डाली गई। तो ये जो 40 साल का जमाना है जिसमें अभी उनमें रूह दाखिल नहीं की गई तो ये जमाना मुराद है। तो यहां देखो हीन के जरिए वो 40 साल की मुद्दत मुराद है, और ये तवील मुद्दत है भाई। तो मालूम हुआ हीन के जरिए कभी तवील मुद्दत भी मुराद होती है, और कभी इसके जरिए 6 महीने भी मुराद होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तुती उकुलहा कुल्लहीनिन, कि खजूर का दरख्त जो है ये अपना फल देता है कुल्लहीनिन हर वक्त, मुराद 6 महीने हैं। तो मालूम हुआ यहां हीन से मुराद 6 माह का वक्त है। हासिल ये कि हीन का लफ्ज कलील जमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तवील जमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मुतवस्सित जमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हमने इसको मुतवस्सित जमाने पर महमूल कर लिया जब कसम खाने वाले ने कोई नियत न की हो गई। तो कलील जमाने पर हमने इसको महमूल नहीं किया क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो रुकना वैसे भी हो जाता है, उसमें कसम खाने की जरूरत नहीं। और तवील जमाने पर भी हमने महमूल नहीं किया क्योंकि तवील जमाने पर महमूल करें तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मुअब्बद हो, हमेशा के लिए हो, और मुअब्बद कसम खाने के लिए तो अरबी जुबान में आमतौर पर अबद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कोई आदमी कहता है ला उकल्लिमु ज़ैदन अबदन, मैं ज़ैद के साथ कभी भी बात नहीं करूंगा, या जमाने को साथ जिक्र न किया जाए फिर भी यह कसम मुअब्बद शुमार होती है। कोई कहता है ला उकल्लिमु ज़ैदन, मैं ज़ैद से बात नहीं करूंगा, तो यह कलाम मुअब्बद शुमार होगा। तो लिहाजा जब इसने हीन को जिक्र किया है तो अब इसको मुअब्बद शुमार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुअब्बद का इरादा होता तो कहने वाला या अबद का लफ्ज जिक्र करता या सिरे से हीन का लफ्ज जिक्र ही नहीं करता। तो हमने इससे कलील जमाना भी मुराद नहीं लिया, तवील जमाना भी मुराद नहीं लिया, बल्कि मुतवस्सित जमाना यानी 6 महीने मुराद ले लिए। हीन का यह हुक्म है तो, और इसी तरह जमान का जो लफ्ज है उसका भी यही हुक्म है भाई। जबकि दहर का लफ्ज जो है, साहिबैन फरमाते हैं दहर के लफ्ज का भी वही हुक्म है जो हीन और जमान का है, इससे 6 माह मुराद होंगे जब कोई नीयत ना हो। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम दहर क्या चीज है, तो इमाम साहब ने इसमें तवक्कुफ किया है, अपनी राय नहीं दी। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि ये जो इख्तिलाफ है, ये दहर का लफ्ज जब नकेरा हो तो उसमें ये इख्तिलाफ है, इसलिए क्योंकि दहर का लफ्ज जब मारिफा हो अद दहर, तो फिर इसके लिए अबद मुराद होता है, यानी हमेशा का जमाना मुराद होता है जब अद दहर अलिफ लाम के साथ हो। तो इमाम साहब ने दहर का लफ्ज जब नकेरा हो तो उसमें तवक्कुफ फरमाया, कि वजह यह है कि ये जुबान का मामला है और जुबान के अंदर कियास जारी नहीं होता, लिहाजा इस दहर को हम हीन और जमान वगैरह पर कियास नहीं कर सकते। तो कियास के जरिए इसको नहीं जाना जा सकता, उर्फ के जरिए पता चल सकता है कि अरब उनकी आदत क्या है, उनका तरीका क्या है, उससे पता चल सकता है, लेकिन अरब का तरीका भी इसके बारे में मुख्तलिफ है भाई। कभी वो इसको हीन और जमान के माना में इस्तेमाल करते हैं और कभी अबद के माना में इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उसके जरिए भी कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। तो इसलिए इमाम साहब ने इंतहाई एहतियात पर अमल करते हुए अपनी राय ही नहीं दी दहर के बारे में। फिर उसके बाद मसला जिक्र फरमाया साहिब हिदाया ने, अगर एक शख्स ने कसम उठा ली कि वल्लाह वो फुला से कुछ दिन बात नहीं करेगा, अय्याम का लफ्ज जिक्र किया, अय्याम जमा है यौम की, और अय्याम उसने नकेरा जिक्र किया, तो फिर इस सूरत में हमारे अइमा फरमाते हैं कि जब अय्याम का लफ्ज नकेरा जिक्र किया जाए तो फिर यह तीन दिन पर महमूल होगा, क्योंकि जमा का इतलाक कम अज कम तीन अफराद पर होता है, कम अज कम तीन अफराद पर, तो यहां भी इसे तीन दिन मुराद लेंगे। और अगर उसने अल अय्याम अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल किया तो फिर इस सूरत में इमाम साहब के नजदीक इस कसम को महमूल किया जाएगा दस दिनों पर, इसलिए क्योंकि जमा का लफ्ज ज्यादा से ज्यादा दस के आदत तक इस्तेमाल किया जाता है, दस से ज्यादा हो जाए तो फिर जमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा जमा का लफ्ज दस तक आदत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं कहना चाहता हूं तीन दिन, तो मैं कहूंगा सलासतु अय्यामिन, देखो अय्याम जमा का लफ्ज में लाया। मैं चार दिन कहना चाहता हूं तो अरबातु अय्यामिन, देखो अय्याम में जमा का लफ्ज लाया। इसी तरह है दस तक भाई आशारातु अय्यामिन, देखो यहां पर भी आशारा के साथ मैं अय्याम का लफ्ज जमा लेकर आया, लेकिन इसके बाद ऊपर वाले आदत में जाए, मसल में 11 दिन कहना चाहता हूं तो कहूंगा आहादा आशारा यौमन। अब यहां यौमन देखो मैं मुफरद लेकर आया जी। तो 10 से ऊपर जो लफ्ज है वो मुफरद इस्तेमाल होता है, तो 11 दिन आहादा आशारा यौमन, 12 दिन के लिए कहेंगे इसना आशारा यौमन, 13 दिन के लिए कहेंगे सलासता आशारा यौमन, 14 दिन के लिए कहेंगे अरबाता आशारा यौमन, तो देखो यौम का लफ्ज मुफरद इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह इशरूना यौमन 20 दिन, यहां भी यौम का लफ्ज मुफरद है, इशरूना यौमन, सलासूना यौमन, अरबाऊना यौमन, या इसी तरह मिया को देख लें मियातु यौमिन, मिया के साथ भी यौम का लफ्ज लाएंगे तो मुफरद ही लाएंगे, या अल्फ यौमिन, अल्फ के साथ भी यौम का लफ्ज लाएंगे तो मुफरद ही लेकर आएंगे। तो मालूम हुआ कि जमा का लफ्ज तीन से लेकर दस तक के अफराद पर बोला जाता है, उससे ज्यादा अफराद हों तो उसके लिए मुफरद लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इमाम साहब फरमाते हैं कि अय्याम का लफ्ज जब नकेरा हो तो फिर इस सूरत में ये सिर्फ तीन अफराद इससे मुराद होंगे, और जब अल अय्याम का लफ्ज आए यानी मुअर्रफ बिल्लाम हो तो फिर दस अफराद मुराद होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जमा का लफ्ज दस अफराद पर बोला जाता है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि जब अल अय्याम मारिफा हो तो फिर इससे हफ्ते के सात दिन मुराद लेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दिन कितने हैं सात हैं, और फिर उसके बाद उन्हीं दिनों का दोबारा तकरार शुरू हो जाता है। मसलन हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, ये सात दिन हैं, फिर उसके बाद दोबारा वही फिर शुरू हो जाएंगे हफ्ता इतवार पीर भाई। तो मालूम हुआ ज्यादा से ज्यादा दिन कितने हैं जो मुकर्रर हैं और मारूफ हैं, वो सात हैं, तो अल अय्याम की सूरत में ये वाले माहूद और मुतायन दिन मुराद ले लेंगे। तो ये अलिफ लाम कौन सा हो जाएगा, आहदी हो जाएगा भाई। और इसी तरह शुहूर के अंदर भी है। कोई शख्स अगर अशुहूर कहता है, शुहूर जमा है शहर की और शहर महीने को कहते हैं, तो अगर एक शख्स ने कसम उठाई कि वह अल्लाह फुलां से मैं कई महीने बात नहीं करूंगा, अशुहूर उसने जमा का सीगा इस्तेमाल किया अलिफ लाम के साथ, तो इमाम साहब के नजदीक जमा का इतलाक ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद पर होता है, लिहाजा इसे 10 महीने मुराद होंगे। जबकि साहिबान फरमाते हैं कि इस पर अलिफ लाम आया है तो इसके जरिए वो जो माहूद और मुतायन महीने हैं उनकी तरफ इशारा होगा, और वो माहूद और मुतायन महीने तो 12 हैं भाई, और फिर 12 महीनों के बाद जब साल पूरा हो जाता है फिर दोबारा से उन्हीं महीनों का तकरार शुरू हो जाता है। और इसी तरह साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा कि अगर तुम मेरी कसीर अय्याम तक खिदमत करो तो तुम आजाद हो, अब अय्याम कसीरा से क्या मुराद है, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि अय्याम कसीरा से मुराद 10 दिन होंगे, और जबकि साहिबैन फरमाते हैं 7 दिन इससे मुराद होंगे। उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया था कि एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू बच्चे को जन्म दे तो तुझे तलाक है, या अपनी बांदी से कहा कि अगर तू बच्चे को जन्म दे तो तू आजाद है, और फिर इस बीवी और बांदी ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया, तो इस सूरत में याद रखो ये मुर्दा बच्चा भी बच्चा ही है भाई, लिहाजा वो उस बीवी को तलाक हो जाएगी और बांदी आजाद हो जाएगी भाई, क्योंकि उर्फ में भी मुर्दा बच्चे को बच्चा कहते हैं भाई, और शरीयत के अंदर भी मुर्दा बच्चे को बच्चा समझा जाता है। चुनाचे इसीलिए अगर कोई औरत हामिला हो और अपनी इद्दत गुजार रही है तो चाहे मुर्दा बच्चे को ही क्यों ना जन्म दे दे, उसकी इद्दत पूरी हो जाती है भाई, मालूम हो मुर्दा बच्चा भी बच्चा ही शुमार होता है। और नीज इसी तरह जैसे जिंदा बच्चे के बाद जो औरत को खून आए उसे निफास कहते हैं, तो मुर्दा बच्चे के बाद जो औरत को खून आए उसको भी निफास कहते हैं, मालूम हो शरान ये मुर्दा बच्चा भी बच्चा ही है। इसी तरह अगर बांदी जो है आका के मुर्दा बच्चे को भी जन्म दे फिर भी वो उसकी उम्मे वलद बन जाती है भाई, उसकी उम्मे वलद बन जाती है। चुनाचे मसलन एक बांदी हामिला थी, आका ने कह दिया कि ये इसका हमल मुझ से है, और फिर उसने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया, तो अब बच्चा तो मुर्दा है लेकिन ये बांदी उम्मे वलद बन जाएगी भाई, बांदी उम्मे वलद बन जाएगी भाई। तो लिहाजा जब बीवी ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया या बांदी ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया तो शर्त पूरी हो गई, जब शर्त पूरी हो गई तो बीवी को तलाक हो गई और बांदी को आजादी मिल गई, बात समझ में आ गई। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स ने अपनी बांदी से कहा कि जब तूने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा आजाद है, तो बच्चा आजाद है, फिर उस बांदी ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद फिर एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया, तो इमाम साहब के नजदीक ये जिंदा बच्चा आजाद होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, ये बच्चा आजाद नहीं होगा। वजह यह कि जब बांदी ने पहली मर्तबा मुर्दा बच्चे को जन्म दिया तो उस वक्त कसम खुल गई, क्योंकि आका ने भी क्या कहा था, अगर तूने बच्चे को जन्म दिया तो वो आजाद है, तो बच्चे को तो इसने जन्म दे दिया लेकिन बच्चा आजाद नहीं होगा क्योंकि वो तो मुर्दा है, वो तो आजाद होने का अहल ही नहीं है, बात समझ में आ गई, तो ये कसम वैसे ही खुल जाएगी। ये इसी तरह है, कहते हैं जैसे कोई शख्स अपनी बीवी से कहे अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, और फिर इस शख्स ने उस घर में जाने से पहले ही बीवी को तलाक दे दी और फिर इस औरत ने इद्दत भी गुजार ली, अब इस खावन से ये बिल्कुल जुदा हो चुकी है, उसके बाद ये उस घर में जाएगी तो वो कसम वैसे ही खुल जाएगी वो, क्योंकि ये औरत अब तलाक का महल ही नहीं है। तो कभी कभार जजा वाके हुए बगैर ही वो यमीन खुल जाती है भाई। इसी तरह यहां पर भी साहिबैन फरमाते हैं कि जजा तो यह थी कि यह बच्चा आजाद होगा लेकिन यह बच्चा तो मुर्दा है, तो जजा वाके हुए बगैर ही यमीन खत्म हो गई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि इस शख्स ने अगरचे मुतलक बच्चा जिक्र किया था लेकिन मुराद जिंदा बच्चा है, इसलिए क्योंकि इस शख्स का इरादा यह था कि वो जजा के तौर पर बच्चे में आजादी को साबित करना चाहता है, और आजादी तो जिंदा बच्चे में साबित हो सकती है, मुर्दा में तो साबित नहीं हो सकती, तो मालूम हो बच्चे से मुराद उसकी जिंदा बच्चा है, मुर्दा बच्चा नहीं, लिहाजा दूसरी मर्तबा में जब वो जिंदा बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चा आजाद हो जाएगा। जबकि इसके बरखिलाफ जो पहला मसला जिक्र किया जिसमें बीवी की तलाक या बांदी की आजादी को बच्चे की पैदाइश पर मुअल्लक किया था, वहां बीवी की तलाक होने के लिए या बांदी की आजादी के लिए बच्चे का जिंदा होना जरूरी नहीं, लेकिन यहां पर जजा जो है बच्चे की आजादी है और बच्चे की आजादी के लिए बच्चे का जिंदा होना जरूरी है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक शख्स ने कहा कि जो भी पहला गुलाम मैं खरीदूं वो आजाद होगा, तो उसने अव्वल का लफ्ज जिक्र किया, और अव्वल उसे कहते हैं कि उस पर कोई मुकदम भी ना हो और वो अकेला हो। तो दो सिफतें होती हैं अव्वल में, कि वो अकेला हो और कोई उस पर मुकदम ना हो। तो इस शख्स ने एक गुलाम खरीदा, तो जैसे ही खरीदा यह आजाद हो गया, क्योंकि यह अव्वल है, इस पर मुकदम भी कोई नहीं और ये अकेला भी है। और अगर इस शख्स ने दो गुलाम इकट्ठे खरीदे और फिर इन दो के बाद उसने एक तीसरा गुलाम भी अलग खरीदा, तो इस कसम की वजह से इनमें से एक भी आजाद नहीं होगा, क्योंकि इनमें से एक भी अव्वल नहीं। पहले दोनों अव्वल इसलिए नहीं क्योंकि अव्वल के अंदर मुफरद होना जरूरी था, और ये तो दो गुलाम हैं, तो ये इन पर मुकदम तो कोई नहीं लेकिन ये मुफरद नहीं है। और जो तीसरा गुलाम खरीदा वो मुफरत तो है लेकिन उस पर मुकदम दो गुलाम हैं, तो लिहाजा इनमें से कोई भी अव्वल नहीं, लिहाजा कोई भी आजाद नहीं होगा। और अगर एक शख्स ने कहा कि मैं जो आखिरी गुलाम खरीदूं तो वो आजाद है, तो याद रखो आखिरी गुलाम उसे कहते हैं कि जिस पर कोई मुकदम हो, जिस पर कोई मुकदम हो। लिहाजा इस शख्स ने एक ही गुलाम खरीदा और फिर इसका इंतकाल हो गया, तो यह गुलाम आजाद नहीं होगा क्योंकि यह आखिरी नहीं है। आखिरी तो उसे कहते हैं जिस पर कोई और भी मुकदम हो, और इस गुलाम पर तो कोई और गुलाम मुकदम नहीं है। लेकिन अगर इस आदमी ने एक गुलाम खरीदा और फिर कुछ अरसे के बाद एक और गुलाम भी खरीदा और फिर उस आदमी का इंतकाल हुआ, तो फिर यह दूसरा गुलाम आखिरी है, लिहाजा यह आजाद हो जाएगा। अलबत्ता यह कब से आजाद शुमार होगा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जिस दिन से खरीदा है उस दिन से ही आजाद शुमार होगा, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, जिस दिन यह शख्स मरा है उस दिन पता चला कि यह वाला गुलाम आखिरी है, तो उस दिन यह आखिरी होने की सिफत के साथ मुत्तसिफ हुआ, तो उसी दिन आजाद होगा। तो यह मौत के वक्त आजाद हुआ, लिहाजा इसका हुक्म वसीयत वाला है, लिहाजा यह सुलूस माल में से आजाद होगा। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक्त इस गुलाम को खरीदा गया था उस वक्त ही इसके अंदर आखिरी होने वाला वसफ साबित हो गया था, अलबत्ता हमें मौत के वक्त पता चला कि यह आखिरी है, वरना तो यह सिफत उसके अंदर पहले से ही साबित हो चुकी थी, लिहाजा उसी वक्त से यह आजाद हो चुका है। तो मौत के वक्त हमें पता चला, लेकिन हुक्म यही लगाएंगे कि उस वक्त से ही आजाद है। जब उस वक्त से आजाद है तो इसका हुक्म वसीयत वाला नहीं, जब इसका हुक्म वसीयत वाला नहीं तो यह सारे माल में से आजाद होगा, हत्ता कि अगर और कोई माल है ही नहीं उस मरने वाले का तो भी यह गुलाम वैसे ही आजाद हो जाएगा, इस पर कोई सही वगैरह नहीं इमाम साहिब के नजदीक। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि एक शख्स ने कहा कि जिस गुलाम ने भी मुझे फुलानी औरत के बच्चे के जन्म देने की खुशखबरी सुनाई तो वो गुलाम आजाद है, तो इस आदमी को तीन गुलामों ने अलग अलग खबर दी, तो कहते हैं सिर्फ पहला गुलाम आजाद होगा, इसलिए क्योंकि इस आदमी ने बिशारत को जिक्र किया, अरबी जुबान में बिशारत को, और अरबी जुबान में बिशारत जो है खुशखबरी को कहते हैं, यानी वो खबर जिसकी वजह से दूसरे के चेहरे की जिल्द मुतगैयर हो जाए। अगर खुशी वाली खबर है तो चेहरे पर खुशी के आसार आ जाएं, और अगर तकलीफ वाली बात है तो चेहरे पर नागवारी और नापसंदीदगी के आसार आ जाएं। लेकिन उर्फ के अंदर अब ये बिशारत जो है ये खास है खुशखबरी के साथ, तो लिहाजा पहले गुलाम ने जब खबर दी तो वो तो बिशारत है, लेकिन बाद वालों ने जो खबर दी वो बिशारत नहीं, तो सिर्फ पहला गुलाम आजाद होगा, और अगर इन सब ने इकट्ठी खुशखबरी दी तो फिर ये सारे ही आजाद हो जाएंगे। और उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि एक आदमी ने कहा कि अगर मैं फुला गुलाम को खरीदूं तो वह आजाद है, और फिर इसने उस गुलाम को खरीदा और खरीदते वक्त अपने कसम के कफारे की नीयत की, कि इसके जरिए मेरी कसम का कफारा अदा हो जाए, तो कहते हैं इसकी वजह से कसम का कफारा अदा नहीं होगा, अलबत्ता यह गुलाम आजाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसने क्या कहा था कि अगर मैं फुला गुलाम को खरीदूं तो वो आजाद है, तो इस यमीन की वजह से यह गुलाम आजाद हो रहा है, तो यह यमीन इल्लत है आजादी की, तो इस यमीन के साथ ही कफारे की नीयत भी होनी चाहिए थी, लेकिन यमीन के वक्त तो इसने कफारे की नीयत नहीं की, इसने तो खरीदते वक्त नीयत की है, यानी शर्त के वक्त इसने नीयत की है, हालांकि कफारे की नीयत इल्लत के वक्त जरूरी है, शर्त के वक्त जरूरी नहीं है, तो ये गुलाम तो आजाद हो जाएगा अलबत्ता कफारा अदा नहीं होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर किसी शख्स ने अपने बाप को खरीदा और कफारे की नीयत की तो कफारा अदा हो जाएगा हमारे नजदीक। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कफारा अदा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि खरीदना जो है वो तो शर्त है और इल्लत जो है वो करीबी रिश्तेदारी है भाई, तो इल्लत के साथ नीयत का मिला होना चाहिए, यहां तो शिरा के साथ नीयत मिली हुई है, लिहाजा कफारा अदा नहीं होगा। और नीज ए अहनाफ, आप तो कहते हैं कि यही शिरा ही एताक है, हालांकि शिरा एताक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में मुनाफात है, शिरा कहते हैं इस बात मिल्कियत को और एताक कहते हैं इजाला मिल्कियत को, और ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं, तो इस बात को इजाला करार नहीं दिया जा सकता, शिरा को एताक करार नहीं दिया जा सकता, जबकि हम कहते हैं कि हदीस के अंदर शिरा को इताक कहा गया है। हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लन यजजिया वलदुम वालिदहू, कि हरगिज बदला नहीं दे सकती कोई औलाद अपने वालिद को इल्ला अन यजदहू ममलूकन, मगर यह कि वो अपने बाप को ममलूक पालें फयश्तरियहू फयुतिकहू, तो उसको खरीद लें और उसको आजाद कर दें। तो हम कहते हैं देखो इस हदीस के अंदर शिरा ही को एताक करार दिया गया है। इस पर इश्काल होता है कि यहां तो शिरा और एताक के दरमियान फा जिक्र है और फा तो ताकीब माल वसल के लिए आती है, मालूम हुआ दोनों फेल अलग अलग हैं। जैसे एक शख्स कहता है जा अजैदुन फजलसा, जैद आया फिर बैठ गया, तो जा अलग फेल है और फजलसा ये जलसा अलग है क्योंकि इस पर फा दाखिल हो रही है। तो हदीस के अंदर भी फयश्तरियहू और फयुअतिकहू ये दोनों अलग अलग फेल हैं क्योंकि दरमियान में फा जिक्र है। तो ए अहनाफ, आपका तो दावा था कि शिरा ही एताक है, आपका दावा तो इस हदीस से साबित नहीं हो रहा, तो इसका जवाब साहिब हिदायत ने जिक्र किया कि नहीं, बाज़ औकात अरबी जुबान के अंदर भी दो फेल इकट्ठे ही होते हैं लेकिन उनके दरमियान फा जिक्र कर दी जाती है। जैसे अरबी में कहते हैं सकाहू फअरवाहू, उसने उसको पानी पिलाया तो उसको सैराब कर दिया। आप देखो सका अलग फेल है और अरवा, ये अरवा सैराब करना अलग फेल है, लेकिन जिस वक्त पानी पिला रहा है उसी वक्त सैराब भी कर रहा है, तो दोनों इकट्ठे ही हैं फेल लेकिन फिर भी दरमियान में फा लाई गई। इसी तरह अरबी में कहते हैं जराबाहू फाओजाहू, कि उसने उसकी पिटाई की तो उसको तकलीफ दी, तो देखो दरमियान में फा लाए, हालांकि जर्ब और तकलीफ देने का जमाना एक ही है, जिस वक्त जर्ब लग रही है उसी वक्त वो उसको तकलीफ भी दे रहा है। ये इसी तरह कहते हैं अतआमहू फअशबाहू, कि उसने उसको खाना खिलाया तो उसको सैर कर दिया, तो यहां जिस वक्त खाना खिला रहा है उसके साथ ही सैर करने का फेल भी पाया जा रहा है लेकिन फिर भी दरमियान में फा जिक्र की गई। तो यहां हदीस में भी इसी तरह है, खरीदने और एताक के दरमियान फा जिक्र की गई लेकिन दोनों का जमाना एक ही है, वो खरीदना ही एताक है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वलविश्तारा उम्मा वलदिही लम युजज़िहु वमाना हादिहिल मसअलति अन यकूल ली अमतिन कद इस्तौलदहा बिन निकाह इन इश्तरैतुकी फअंति हुर्रतुन अन कफारति यमीनी। भाई इस मसले से पहले एक और पिछला मसला दोहरा लें जो साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया था। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर एक शख्स एक बांदी से निकाह कर ले तो इस बांदी से जो औलाद पैदा होगी उसका नसब इसी खावन से साबित होगा क्योंकि ये औलाद इसकी मनकूहा बीवी से हुई है, वो मनकूहा बीवी जो बांदी है, अलबत्ता ये औलाद जो है बांदी के आका की ममलूक होगी लेकिन बहरहाल इनका नसब साबित है। तो और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि जो शख्स अपनी इस मनकूहा बीवी को खरीद ले जिससे उसकी औलाद हो चुकी है, तो फिर इस सूरत के अंदर यह उसकी उम्मे वलद बन जाएगी, क्योंकि औलाद हो चुकी है और औलाद की वजह से खावन और इस बांदी के दरमियान जुजियत आ चुकी है भाई। तो अब यहां पर भी यही मसला है, सूरत यह है कि एक शख्स ने अपनी उम्मे वलद को खरीदा, उम्मे वलद को खरीदा, तो आपके जहन में इश्काल पैदा होगा कि उम्मे वलद तो अपनी ममलूक होती है, वो अपनी ममलूक बांधी जिससे औलाद पैदा हो, तो उसको खरीदने का क्या माना। तो साहिब हिदाया फिर आपको बतलाएंगे कि इस मसले का माना यह है कि किसी शख्स ने उस बांदी को खरीद लिया जिससे इसने निकाह किया था और जिससे इसकी औलाद हुई थी, तो ये इसकी उम्मे वलद बन जाएगी। अब एक शख्स ने अपनी इस उम्मे वलद को खरीदा और उसने अपनी इस उम्मे वलद से कहा था कि अगर मैं तुझे खरीदूं तो तू आजाद है मेरी कसम के कफारे में जी। अगर मैं तुझे खरीदूं तो तू मेरी कसम के कफारे में आजाद है। तो अब यह शख्स जैसे ही इस उम्मे वलद को खरीदेगा यह उम्मे वलद आजाद हो जाएगी, क्योंकि शर्त पाई गई, इसने भी क्या कहा था अगर मैं तुझे खरीदूं तो तू आजाद है, तो यह आजाद हो जाएगी। अलबत्ता फुकहाए किराम फरमाते हैं कि यह कफारा अदा नहीं होगा, बांदी तो आजाद हो जाएगी लेकिन कफारा अदा नहीं होगा। वजह यह कि यह इसकी उम्मे वलद है और उम्मे वलद तो पहले ही आजादी के मुस्तहिक हो चुकी है, आका के मरने के बाद इसने हर हाल में आजाद होना है। तो लिहाजा यहां पर यह जो उम्मे वलद आजाद हुई है तो यहां पर इस आजादी की निस्बत कामिल तौर पर यमीन की तरफ नहीं है। वो जो उसने तालीक की थी कि अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरी कसम के कफारे में आजाद है, तो इस आजादी की निस्बत कामिल तौर पर इस यमीन की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहां कामिल तौर पर इस यमीन की तरफ आजादी की निस्बत नहीं है, क्योंकि यह उम्मे वलद तो उम्मे वलद होने की वजह से भी आजादी की मुस्तहिक हो चुकी थी। तो ये मालूम हुआ कामिल आजादी नहीं भाई, जब कामिल आजादी नहीं है तो कफारा अदा नहीं होगा, क्योंकि कफारे के अंदर कामिल गुलाम की आजादी चाहिए भाई, जो किसी भी लिहाज से पहले से आजादी का मुस्तहिक न हो भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलव इश्तारा उम्मा वलदही लम युजज़िहू, और अगर किसी ने अपनी उम्मे वलद को खरीदा लम युजज़िहू तो ये उसके लिए काफी नहीं, यानी उसके कफारे के अंदर काफी नहीं है भाई। देखिए ये मतन है, वलव इश्तारा उम्मा वलदही लम युजज़िहू, किसी ने अपनी उम्मे वलद को खरीदा तो ये उसके लिए काफी नहीं, यानी कफारे के अंदर काफी नहीं है। तो यहां कफारे को जिक्र नहीं किया, क्योंकि पिछले मसले में कफारे की बात चल रही थी कि अगर किसी ने अपने बाप को खरीदा और कफारा यमीन की नियत की तो यह काफी हो जाएगा, लेकिन अगर अपनी उम्मे वलद को खरीदा और कफारा यमीन की नियत की तो यह काफी नहीं है। तो कहते हैं वलब इश्तरा उम्मा वलदही लम युजज़िहू, और अगर किसी ने अपने उम्मे वलद को खरीदा तो यह उसके लिए काफी नहीं, यानी इसे कफारा अदा नहीं होगा। वह माना हादिहिल मसअलती, यहां से साहिब हिदाया इस मतन की वजाहत फरमा रहे हैं। मतन में आया अगर किसी ने अपनी उम्मे वलद को खरीदा तो फौरन जहन में सवाल पैदा होता है कि उम्मे वलद तो अपनी ममलूका बांदी होती है तो खरीदने का क्या माना। मैंने आपको बतला दिया कि ऐसी बांदी जिससे किसने निकाह किया था और निकाह से औलाद हुई थी, इसको ये खरीदता है तो ये इसकी उम्मे वलद है, इसको इसने खरीदा। तो कहते हैं वह माना हादिहिल मसअलती, और इस मसले का माना यह है कि यकूल अली अमतिन कद इस्तौलदहा बिन निकाही, कि कोई शख्स कहता है ऐसी बांदी से कद इस्तौलदहा बिन निकाही जिससे इसने औलाद तलब की थी निकाह के जरिए, उस बांदी से वो कहता है इन इश्तरैतु कि फअंत हुर्रतुन अन कफारति यमीनी, कि अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरी कसम के कफारे में आजाद है। सुम इश्तराहा, फिर इस आदमी ने इस बांदी को खरीद लिया, फइन नहा तातिकुल वजूद शर्ति, तो ये बांदी आजाद हो जाएगी शर्त पाए जाने की वजह से। शर्त क्या थी कि अगर मैं तुझे खरीदूं, तो यहां खरीदना पाया गया। तो फहीन नहा तातिकुली वजूद ही शर्ती, तो ये बांदी आजाद हो जाएगी शर्त पाई जाने की वजह से। वला युजजी उहू अनिल कफारती, लेकिन ये एताक जो है कफारे से काफी नहीं होगा। लिअन्न हुर्रियतहा मुस्तहक़तुम बिल इस्तीलादी, इसलिए क्योंकि इसकी आजादी जो है उसका तो इस्तेहकाक हो चुका है बिल इस्तीलादी, उम्मे वलद बनाने की वजह से। उम्मे वलद बनाने की वजह से ये पहले से ही आजादी की मुस्तहिक हो चुकी है। तो कहते हैं लिअन्न हुर्रियतहा मुस्तहक़तुम बिल इस्तीलादी, इसलिए क्योंकि इस बांदी की जो आजादी है उसका तो पहले से ही इस्तेहकाक हो चुका है उम्मे वलद बनाने की वजह से। फला तुज़ाफ़ु इलल यमीन मिन कुल्ली वजहिन, लिहाजा इस आजादी की निस्बत नहीं की जा सकती यमीन की तरफ मिन कुल्ली वजहिन हर एतबार से। भाई अब यह बांदी आजाद तो हो गई लेकिन ये तो पहले से ही आजादी की मुस्तहिक है, लिहाजा इस आजादी की निस्बत कामिल तौर पर उस यमीन की तरफ नहीं की जा सकती। वो जो इसने कहा था अगर मैंने तुझे खरीदा तो मेरी कसम के कफारे में तू आजाद है, उस यमीन की तरफ इस आजादी की निस्बत कामिल तौर पर नहीं है। ये माना है फला तुज़ाफ़ु इलल यमीन मिन कुल्ली वजहिन, तो लिहाजा इसकी निस्बत नहीं की जा सकती उस यमीन की तरफ मिन कुल्ली वजहिन हर एतबार से। बिखिलाफ मा इदा क़ाल लिक़िन्नतिन, बखिलाफ इसके कि जब वो किसी आम बांदी से कहे, किन्नतुन कहते हैं आम बांदी को, ये तो उम्मे वलद थी, इसके बजाय अगर ये किसी आम बांदी से कहता कि अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरी कसम के कफारे में आजाद है, फिर ये उस बांदी को खरीद लेता तो खरीदते ही आजाद भी हो जाती और कसम का कफारा भी अदा हो जाता, इसलिए क्योंकि ये आम बांदी तो किसी भी एतबार से पहले से आजादी के मुस्तहिक नहीं है। तो कहते हैं बेखिलाफी मा इदा काल अली किन्नतिन, बेखिलाफ इसके जब ये किसी आम बांदी से कहे, इन इश्तराई तू किफा अंत हुर्रतुन अन कफारती यमीन, कि अगर मैं तुझे खरीदूं तो तू कफारा यमीन के अंदर आजाद है। हाय सुयु जजी उहू अनहा, इसलिए क्योंकि ये आजादी जो है कफारे से काफी होगी। इदश तराहा, जब ये उस बांदी को खरीद लेगा। लिअन्न हुर्रियतहा गैरु मुस्तहक़तिन बिजहतिन उखरा, इसलिए क्योंकि इस बांदी की जो आजादी है गैरु मुस्तहक़तिन, उसका इस्तेहकाक नहीं है बिजहतिन उखरा, किसी दूसरी जिहत से, किसी दूसरी वजह से यह आजादी की मुस्तहिक नहीं है। फलम यख्तल्लिल इज़ाफ़तु इलल यमीनी, तो लिहाजा यमीन की तरफ जो इस निस्बत हो रही थी उसमें खलल नहीं आया, यानी ये कामिल तौर पर उस यमीन की वजह से ही आजाद हुई है, कोई और वजह आजादी की नहीं है। तो यमीन की तरफ निस्बत हो रही थी आजादी की, उसमें कोई खलल और खराबी नहीं आई। तो यह माना है फलम यख्तल्लिल इज़ाफ़तु इलल यमीनी, तो यमीन की तरफ जो निस्बत है उसमें कोई खलल नहीं आया। वक़द क़ारनत हुन्नियतु, और तहकीक उस यमीन के साथ नीयत भी मिली हुई है, उस यमीन के साथ उसने कफारे की नीयत भी की थी। क्या कहा था? अगर मैं तुझे खरीदूं तो तू मेरी कसम के कफारे में आजाद है। तो देखो वहां यमीन के साथ ही कफारे की नीयत भी मिली हुई है। बात समझ में आ गई? भाई मेरी किताब में है वकद कारनत हु, यह हा जमीर शिरा की तरफ लौटाई गई है, हा जमीर के नीचे अशिरा का लफ्ज है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं। भाई याद रखो शिरा जो है वह शर्त है, और कफारे की जो नीयत है वो आजादी की इल्लत के साथ मिली होनी चाहिए, और आजादी की इल्लत यमीन है शिरा नहीं, शिरा तो शर्त थी अगर मैंने तुझे खरीदा। तो यहां इस कारणत हूं कि हा जमीर यमीन को लौटाएं, इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि हा जमीर तो मुजक्कर की है और यमीन तो अरबी जुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, यमीन का लफ्ज तो मुअन्नस सिमाई है। तो जवाब याद रखना कि फिर ऐसे मकाम पर तावील की जाती है, तो ये हा जमीर यमीन को लौट रही है हल्फ की तावील में। हल्फ भी किसे कहते हैं? हल्फ भी यमीन ही को कहते हैं, और वो लफ्ज मुजक्कर है भाई। या ये जमीर लौटाएंगे यमीन की तरफ मजकूर उनकी तावील में, कि वो जो मजकूर है उसके साथ नीयत मिली हुई है, यानी यमीन भाई। कहते हैं वकद कारनत उन नीयतु, और हाल ये है कि उस यमीन के साथ नीयत मिली हुई है, और यमीन जो है वही आजादी की इल्लत है, तो उसके साथ कफारे की नीयत का मिला होना जरूरी था और वो यहां पाई गई, तो ये बांदी आजाद भी हो जाएगी और कफारा भी अदा हो जाएगा। आगे देखिए, वमन काल इन तसर्रई तु जारियतन फहिया हुर्रतुन। भाई यहां तसर्री का लफ्ज आया, तसर्रा या तसर्रा तसर्रियन, इसका माना होता है खुफिया तौर पर कोई फेल करना, छुपा कर कोई फेल करना, और यहां इससे मुराद जिमा है, सोहबत मुराद है, क्योंकि जिमा भी छुप कर किया जाता है। तो सूरत यह है, एक शख्स ने कसम उठाई कि अगर मैंने किसी बांदी से तसर्री की, यानी मैंने अगर किसी बांदी के साथ सोहबत की, तो वो बांदी आजाद है। तो याद रखो, हमारे नजदीक जो इसकी ममलूका बांदियां हैं उनके हक में तो ये यमीन मुनाकिद हो गई, लिहाजा उनमें से जिस बांदी के साथ भी ये सोहबत करेगा वो आजाद हो जाएगी, क्योंकि इसने भी क्या कहा था, अगर मैं किसी बांदी के साथ सोहबत करूं तो वो आजाद है। तो लिहाजा इसकी जो ममलूका बांदियां हैं उनके हक में ये यमीन मुनाकिद हो गई, उनमें से किसी के साथ भी ये सोहबत करेगा तो वो आजाद हो जाएगी। लेकिन अगर इस यमीन के बाद इसने किसी नई बांदी को खरीदा और उसके साथ इसने सोहबत की, तो इसके हक में यमीन मुनाकिद नहीं है, लिहाजा ये बांदी आजाद नहीं होगी, ये बांदी आजाद नहीं होगी। वजह यह कि आप पढ़ चुके हैं कि यमीन के मुनाकिद होने के लिए किसी गुलाम या बांदी के बारे में आप तालीक करते हैं या कसम खाते हैं, तो इस तालीक या कसम खाने के लिए जरूरी है कि वो गुलाम या बांदी आपका ममलूक हो, और अगर ममलूक नहीं है तो फिर जरूरी है कि मिल्कियत की तरफ आप निस्बत करें। इन मलक तू का या इन मलक तू की, अगर मैं तेरा मालिक बना, अगर मैं तेरा मालिक बना तो तू आजाद है। तो देखो, जब मिल्कियत ना हो तो फिर मिल्कियत की तरफ निस्बत भी कर दी जाए तो काफी है भाई, या मिल्कियत की तरफ भी निस्बत नहीं की, सबबे मिल्कियत की तरफ निस्बत कर दी। सबबे मिल्कियत यानी जो मिल्कियत का सबब है, जैसे खरीदना, कोई गुलाम या बांदी को खरीदता है तो उसका मालिक बन जाता है। तो अगर किसी गैर के गुलाम से कहा इनिश्तरैतु का फअंत हुर्रुन, अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू आजाद है, या इनिश्तरैतु की फअंत हुर्रतुन, अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू आजाद है। तो मालूम हुआ गुलाम या बांदी के हक में यमीन के मुनाकिद होने के लिए जरूरी है कि यमीन के वक्त इंसान उनका मालिक हो, या अगर यमीन के वक्त उनका मालिक नहीं है तो फिर उस यमीन की निस्बत करे मिल्कियत या सबबे मिल्कियत की तरफ, तो फिर इस सूरत में भी उस गैर ममलूक के बारे में भी वो यमीन मुनाकिद हो जाएगी। लेकिन यहां पर तो इसने मिल्कियत या सबब मिल्कियत की तरफ कोई निस्बत नहीं की, सिर्फ इतना कहा है इन तसर्रई तु जारियतन फहिया हुर्रतुन, कि अगर मैंने किसी बांदी के साथ तसर्री की तो वो आजाद है। तो यहां मिल्कियत को जिक्र नहीं किया या सबब मिल्कियत को जिक्र नहीं किया, तो सिर्फ वो बांदियां जो इस वक्त ममलूक हैं उनके हक में ये कसम और ये यमीन मुनाकिद हो गई, उनसे तसर्री करेगा, जिमा करेगा तो वो आजाद हो जाएंगी, लेकिन किसी और बांदी को बाद में खरीदे और उससे जिमा करे तो वो आजाद नहीं होगी। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा इन तसर्रैतु जारियतन फहिया हुर्रतुन, अगर मैंने किसी बांदी से सोहबत की फहिया हुर्रतुन तो ये आजाद है। फतसर्रा जारियतन कानत फी मिल्की ही, तो इसने जिमा कर लिया ऐसी बांदी से जो उसकी मिल्कियत में थी, यानी कसम के वक्त उसकी मिल्कियत में थी, उससे इसने सोहबत कर ली, आताकत, तो वो बांदी आजाद हो जाएगी। लिअन्नल यमीना नाकदत फी हक्किहा, इसलिए क्योंकि ये यमीन इस बांदी के हक में मुनाकिद हो गई, लिमुसादफति हल मिल्का, इस वजह से कि इस यमीन ने मुलाकात की है उस मिल्कियत से, यानी उस बांदी से जिसमें इस आदमी की मिल्कियत है। तो यमीन के वक्त या मिल्कियत होनी चाहिए या यमीन के अंदर मिल्कियत की तरफ निस्बत होनी चाहिए या सबब मिल्कियत की तरफ निस्बत होनी चाहिए। तो कहते हैं, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्नल यमीनन अकदत फी हक्किहा, इसलिए क्योंकि यमीन इस बांदी के हक में भी मुनाकिद हो गई है, लिमुसादफति हल मिल्का, इसलिए क्योंकि इस यमीन ने मुलाकात की है इस आदमी की मिल्कियत से, वहादा लिअन्नल जारियता मुनक्करतुन फी हादा शर्ती, और वो इसलिए क्योंकि जारिया का जो लफ्ज है मुनक्करतुन वो नकेरा है, फी हादा शर्ती इस शर्त में, ये जो इसने कहा था इन तसर्रैतु जारियतन, तो ये जारिया का लफ्ज नकेरा है, तो लिहाजा ये इसकी हर बांदी को शामिल है भाई। तो कहते हैं वहाद अली अन नल जारिया था मुनक्करा तुनफी शर्ती, और ये इसलिए क्योंकि जारिया का लफ्ज नकेरा है इस शर्त के अंदर। फयतना वलू कुल्ला जारियतिन अलल इनफिरादी, तो ये शामिल होगा हर बांदी को अलल इनफिरादी अकेले तौर पर, अकेले तौर पर, यानी इसकी ममलूका हर हर बांदी इसके अंदर दाखिल है, लेकिन इकट्ठी होकर नहीं, मजमुआ नहीं, क्योंकि मुफरत का लफ्ज जिक्र किया है जारियतन, और मुफरत एक फर्द को शामिल होता है, मजमुए को शामिल नहीं होता। तो इसकी हर हर बांदी इसके अंदर दाखिल है भाई, लेकिन इनफिराद के तरीके पर, क्योंकि एक बांदी है इसकी वो भी जारिया है, दूसरी बांदी है वो भी जारिया है, तीसरी इसकी बांदी है वो भी क्या है, जारिया है। तो हर हर बांदी अलग अलग तौर पर इस कसम के तख्त, इस यमीन के तख्त दाखिल है भाई। ये माना है फयतनावलु कुल्ला जारियतिन अलल इनफिरादी, तो ये जारिया का लफ्ज शामिल है हर बांदी को अलल इनफिरादी अकेले भाई, यानी अकेली अकेली बांदी इसके अंदर दाखिल है, सारी इकट्ठी होकर मजमुआ नहीं, क्योंकि जारिया का लफ्ज मुफरत पर बोला जाता है, जमा पर नहीं बोला जाता। वह इन इश्तरा जारिया तन फतसर रहा लम तातिक बिहादिहिल यमीनी, और अगर इसने कोई और बांदी खरीदी फतसर रहा फिर उसके साथ इसने जिमा कर लिया लम तातिक बिहादिहिल यमीनी, तो इस यमीन की वजह से ये नई बांदी आजाद नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी ममलूका नहीं थी कसम के वक्त, और न इसकी तरफ इसने मिल्कियत या सबबे मिल्कियत की निस्बत की है। तो कहते हैं वह इन इश्तरा जारियतन फतसर रहा लम तातिक बिहादिहिल यमीनी, और अगर इसने कोई और बांदी खरीदी और फिर उससे जिमा कर लिया तो इस कसम की वजह से ये वाली बांदी आजाद नहीं होगी। खिलाफन लेजुफर रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम जुफर के, वो फरमाते हैं ये वाली बांदी भी आजाद हो जाएगी, ये वाली बांदी भी आजाद हो जाएगी। वो फरमाते हैं वजह यह है कि आका ने तसर्री का लफ्ज जिक्र किया है जिमा करने का, और जिमा करना तो सिर्फ अपनी ममलूका बांदी से जायज है, गैर ममलूका के साथ तो जायज ही नहीं। तो गोया इस शख्स ने जिक्र तो मुतलक तसर्री को किया है, लेकिन इसके अंदर मिल्कियत को भी हमें मानना पड़ेगा कि गोया साथ उसने मिल्कियत भी जिक्र कर दी, तसर्री के साथ मिल्कियत भी जिक्र कर दी कि अगर मैं अपनी किसी ममलूका बांदी से जिमा करूं जी। तो मुतलक बांदी मुराद नहीं है बल्कि ममलूका बांदी मुराद है। क्यों ममलूका बांदी मुराद है? क्योंकि अपनी ममलूका बांदी से ही तसर्री और जिमा जायज है, गैर ममलूका से तो जिमा जायज ही नहीं। तो तसर्री का जिक्र ऐसे ही है गोया उसने ममलूका होने को भी जिक्र कर दिया, और ये जो नई बांदी इसने खरीद ली है ये भी इसकी ममलूका बांदी है, तो इसके साथ भी जब ये तसर्री करेगा जिमा करेगा तो ये भी आजाद हो जाएगी। तो कहते हैं खिलाफन ले जुफर रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, फइन नहु यकूल, क्योंकि वो फरमाते हैं अतसर्री ला यसिहु इल्ला फिल मिल्की, कि तसर्री यानी जिमा तो सही नहीं होता मगर अपनी ही मिल्कियत में। फकान जिक्रुहु जिक्रल मिल्की, तो तसर्री का जिक्र जो है मिल्कियत का जिक्र है, तसर्री को जिक्र कर दिया तो गोया मिल्कियत को भी जिक्र कर दिया। फसार कमा इदा काल अली अजनबीयतिन, तो ये ऐसे ही हो गया, कहते हैं जैसे कोई शख्स किसी अजनबी औरत से कहे जी। एक शख्स है वो एक अजनबी औरत से कहता है इन तल्लक तू की फअब्दी हुर्रुन, अगर मैंने तुझे तलाक दी तो मेरा गुलाम आजाद है। अब ये तो अजनबी औरत है भाई, और ये तालीक करने वाला तलाक को जिक्र कर रहा है, और तलाक के लिए तो निकाह का होना जरूरी है, तो यहां पर तलाक का जिक्र गोया निकाह का भी जिक्र है। उसने जिक्र सिर्फ तलाक को किया है, लेकिन यूं समझेंगे इसने निकाह को भी जिक्र किया है, और यूं कहा है कि अगर मैंने तुझसे निकाह किया और फिर तुझे तलाक दे दी तो मेरा गुलाम आजाद है जी। तो तलाक के साथ ही निकाह को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि तलाक बगैर निकाह के नहीं हो सकती। तो यहां पर भी ये जो आदमी ने तसर्री जिक्र की है, तसर्री तो बगैर मिल्कियत के नहीं हो सकती, तो तसर्री को जिक्र करना इसी तरह है जैसे मिल्कियत को भी जिक्र कर दिया जाए, जैसे तलाक को जिक्र करना इसी तरह है जैसे निकाह को भी जिक्र कर दिया जाए। तो कहते हैं फसार कमा इदा काल अली अजनबीयतिन, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे किसी शख्स ने किसी अजनबिया से कहा इन तलक तु की फाबदी हुर्रुन, अगर मैंने तुझे तलाक दी तो मेरा गुलाम आजाद है। यसीरु तजवुजु मस्कूरन, तजवुज का माना शादी और निकाह भाई, यसीरु तजवुजु मस्कूरन, तो निकाह भी मस्कूर होगा। अगरचे उसने निकाह को जिक्र तो नहीं किया लेकिन निकाह भी यूं समझेंगे कि यहां मजकूर है, यह माना है यसीरु तजवुजु मजकूरन, तो निकाह भी मजकूर होगा। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना अन्नल मिल्क यसीरु मजकूरन जरूरत सेहत तसर्री, अब हमारी दलील आ गई। हम कहते हैं कि इमाम जुफर रहमतुल्लाह की बात सही है कि तसर्री यानी जिमा तो सिर्फ अपनी ममलूका बांदी में ही सही है, लिहाजा तसर्री का जिक्र यह तकाजा करता है कि मिल्कियत को भी यहां मजकूर मान लिया जाए। तो यह तसर्री किस चीज का तकाजा कर रहा है? मिल्कियत का, लिहाजा यहां पर मिल्कियत को भी माना जाएगा। लेकिन यह मिल्कियत हमने क्यों मानी? क्योंकि तसर्री उसका तकाजा कर रही थी, तो उसके बगैर कलाम ही सही नहीं बनता था, क्योंकि अपनी बांदी ही के साथ सोहबत जायज है, गैर की बांदी के साथ तो सोहबत जायज नहीं। तो यहां पर हमें इस यमीन के अंदर मिल्कियत को मजबूर मानना पड़ा क्योंकि तसर्री उसका तकाजा कर रही है, तो ये इक्तिजाअन हमें मिल्कियत को मानना पड़ा, यानी तसर्री के सही होने के लिए मिल्कियत का होना जरूरी है। तो यहां पर हमें मिल्कियत को मजकूर मानना पड़ा तसर्री की जरूरत की वजह से। और आपने जाब्ता पढ़ा है अजरूरी यतकद्दरु बिकद्री जरूरती, कि वो चीज जिसको जरूरत की वजह से साबित माना जाए वो बकद्रे जरूरत ही साबित होती है, वो चीज जिसको जरूरत की वजह से मानना पड़े वो बकदरे जरूरत ही साबित होती है। तो लिहाजा यहां पर भी तसर्री की जरूरत की वजह से हमें मिल्कियत को मानना पड़ा, लिहाजा तसर्री के हक में तो मिल्कियत मजकूर है लेकिन जजा के हक में तो मिल्कियत मजकूर नहीं। जजा क्या थी? फहिया हुर्रतुन इन तसर्रई तुजारियतन फहिया हुर्रतुन, तो ये जो जजा है इसके हक में तो मिल्कियत मजकूर न हुई। भाई देखिए ना, यमीन जो है वो शर्त और जजा से मिलकर बनती है। इन तसर्रई तुजारियतन ये है शर्त और फहिया हुर्रतुन ये है जजा, तो यमीन जो है ये शर्त और जजा से मुरक्कब है भाई। और आपको मैंने जाब्ता बतलाया कि किसी गुलाम या बांदी के बारे में यमीन तभी मुनाकिद होगी जब उसके अंदर आपकी मिल्कियत हो कसम खाते वक्त यानी तालीक करते वक्त, और अगर मिल्कियत नहीं है तो फिर आपको मिल्कियत की तरफ निस्बत करना पड़ेगी या सबबे मिल्कियत यानी शेरा वगैरह की तरफ निस्बत करना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा यहां पर एक है शर्त इन तसर्रैतु जारियतन और एक है जजा फहिया हुर्रतुन, तो आपने मिल्कियत को इक्तिजाअन मान लिया तसर्री की वजह से, और तसर्री तो जिक्र है शर्त के अंदर, तो गोया शर्त के अंदर मिल्कियत मजकूर हो गई। लेकिन जजा के अंदर भी मिल्कियत का आना जरूरी है, लेकिन जजा के अंदर तो कोई मिल्कियत जिक्र नहीं और ना ही वो बांदी उसकी ममलूका है जब ये यमीन मुनाकिद कर रहा है। तो लिहाजा ये जो बांदी इसने बाद में खरीदी है इसके हक में यमीन मुनाकिद ही नहीं हुई जी। ये जो बांदी इसने बाद में खरीदी है उसके हक में यमीन मुनाकिद ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यमीन के मुनाकिद होने के लिए क्या जरूरी है कि उस गुलाम या बांदी में उस यमीन के वक्त ही मिल्कियत हो या उसकी तरह मिल्कियत या सबब मिल्कियत की निस्बत की जाए। और यहां पर ये जो नई बांदी खरीदी है ना तो ये कसम के वक्त ना इसके अंदर मिल्कियत है और ना इसकी तरफ मिल्कियत या सबब मिल्कियत की निस्बत की है। अगर आप तसर्री के अंदर मिल्कियत को मान भी लेते हैं, तसर्री तो शर्त के अंदर जिक्र है इन तसर्रैतु जारियतन, तो शर्त के एतबार से तो हमें भी तस्लीम है मिल्कियत आ गई, मिल्कियत मजकूर हो गई। लेकिन यमीन तो सिर्फ शर्त का नाम नहीं है, यमीन में तो जजा भी है, तो जजा के हक में भी मिल्कियत साबित होनी चाहिए, लेकिन जजा के हक में यहां मिल्कियत साबित नहीं हो रही। जजा के हक में मिल्कियत साबित नहीं हो रही, तो शर्त और जजा दोनों के अंदर मिल्कियत का होना जरूरी था। तो जब दोनों के अंदर मिल्कियत मजकूर नहीं है तो लिहाजा उस नई बांदी को जिसको इसने अब खरीदा है उसके हक में यह यमीन मुनाकिद ही नहीं हुई। ये यमीन मुनाकिद ही नहीं हुई। तसर्री जो शर्त के अंदर जिक्र है उस तसर्री के हक में तो मिल्कियत जाहिर हो गई, वहां तो मिल्कियत को मंजूर मान लिया गया, लेकिन अजरूरी यह तकद्दर बिकद्री जरूरती, तो ये जो मिल्कियत साबित हुई है ये तसर्री की जरूरत की वजह से साबित हुई है, लिहाजा ये सिर्फ तसर्री यानी शर्त के लिए ही मजकूर हुई है, जजा के लिए मजकूर नहीं। लिहाजा जब जजा के लिए मिल्कियत मजकूर नहीं तो जजा इस नई बांदी के हक में मुनाकिद नहीं, यानी उसके हक में ये यमीन मुनाकिद ही नहीं हुई। बात समझ में आ गई। तो वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नल मिल्क यसीरो मजकूरन के मिल्कियत जो है वह मजकूर हो गई, जरूरत सेहति तसर्री तसर्री के सही होने की जरूरत की वजह से, वह हुआ शर्त उन, और तसर्री तो शर्त है, तसर्री शर्त है, इन तसर्रई तुजारियतन, और तसर्री के सही होने के लिए मिल्कियत को मजकूर मान लिया, लेकिन कहां मजकूर माना, शर्त के अंदर। तो कहते हैं फिर तर्जमा देख लीजिए कि वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नल मिल्क यसीर मजकूरन जरूरत सेहति तसर्री के मिल्कियत मजकूर हो गई तसर्री के सही होने की जरूरत की वजह से, वह हुआ शर्त उन, और हाल यह है कि तसर्री तो शर्त है, फयतकद्दरु बिकद्री ही, तो मिल्कियत जो है वह साबित होगी बकद्र जरूरत ही, और यानी सिर्फ शर्त के हक में मिल्कियत जाहिर हुई है। फला यज़हरु फी हक़ सिहतिल जज़ाई, लिहाजा ये मिल्कियत जाहिर नहीं होगी जजा के सही होने के हक में। भाई तसर्री सही नहीं हो रही थी, यानी शर्त सही नहीं हो रही थी बगैर मिल्कियत के, तो वहां हमने मिल्कियत मान ली तो शर्त तो सही हो गई, लेकिन जजा के सही होने के लिए भी तो मिल्कियत जरूरी थी, जजा के हक में तो मिल्कियत जाहिर नहीं हुई, लिहाजा जजा ममलूका बांदियों के अलावा किसी और बांदी के लिए यह जजा मुनाकिद नहीं हुई, यानी उसके बारे में यमीन ही मुनाकिद नहीं हुई। भाई तो कहते हैं फला यज़हरु फी हक़ सिहतिल जज़ाई, लिहाजा ये मिल्कियत जाहिर नहीं होगी जजा के सही होने के हक में, वह हुवल हुर्रियतु, और जजा तो हुर्रियत है कि फहिया हुर्रतुन इसने कहा था, तो उसके हक में मिल्कियत जाहिर नहीं, यानी ममलुका बांदियों के अलावा और बांदियों के हक में जजा मुनकिद नहीं, और जब जजा मुनकिद नहीं तो उनके हक में यमीन ही मुनकिद नहीं, क्योंकि यमीन तो नाम है शर्त और जजा के मजमूए का। भाई आगे देखिए, वफी मसअलती तलाक इन नमा यज़हरु फी हक़ शर्त दून अल जज़ाई, और तलाक के मसले में इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह ने तसर्री के मसले को कियास किया था तलाक के मसले में। एक शख्स एक अजनबिया से कहता है इन तलक्तु की फ़अब्दी हुर्रुन, अगर मैंने तुझे तलाक दी तो मेरा गुलाम आजाद है, और तलाक के सही होने के लिए निकाह का होना जरूरी है, तो वहां हमने निकाह को मजकूर मान लिया। तो उसका आप जवाब दे रहे हैं हम इमाम ज़ुफ़र को कि वहां पर भी जो निकाह को मजकूर माना गया वो तलाक यानी शर्त के सही होने के लिए है, तो शर्त के हक में तो निकाह जाहिर हो गया, लेकिन जजा के हक में भी निकाह को होना चाहिए था, लेकिन जजा के हक में तो निकाह जाहिर नहीं है, लिहाजा जजा मुनाकिद नहीं हुई, शर्त तो मुनाकिद हो गई। इन तलक्तु की इसका क्या माना है, इन तज़व्वजतु की फतल्लक्तु की, अगर मैंने तुझे निकाह किया और फिर तुझे तलाक दी, तो यहां तो निकाह का लफ्ज आ गया, लेकिन फ़अब्दी हुर्रुन जजा के लिए भी निकाह को मजकूर होना चाहिए था, जजा के हक में तो निकाह मजकूर नहीं, लिहाजा ये यमीन भी मुनाकिद नहीं हुई, क्योंकि यमीन नाम है शर्त और जजा दोनों के मजमूए का, शर्त के अंदर तो निकाह मजकूर हो गया लेकिन जजा के अंदर निकाह मजकूर नहीं है, लिहाजा ये यमीन मुनाकिद नहीं हुई। लिहाजा अगर ये इस औरत से निकाह कर लेगा और फिर इसको तलाक दे देगा तो गुलाम आजाद नहीं होगा, क्योंकि यमीन ही मुनाकिद नहीं हुई थी। कहते हैं बल्कि इसकी वजाहत एक और मिसाल से हो जाती है, साहिबे हिदायत भी जिक्र फरमाएंगे। एक शख्स एक अजनबिया से कहता है इन तलक्तु किफा अंति तालिकुन सलासन, एक शख्स एक अजनबिया औरत से कहता है इन तलक्तु की, अगर मैंने तुझे तलाक दी फंति तालिकुन सलासन, तो तुझे तीन तलाकें हैं, यानी जब भी मैं तुझे तलाक दूं तो तीन तलाकें हैं। अब यहां पर ये औरत तो अजनबिया है, अजनबिया को तो वो तलाक दे ही नहीं सकता, लिहाजा इन तलक्तु की ये जो शर्त थी इसके शर्त के सही होने के लिए निकाह का होना यहां मजकूर मान लिया गया, कि तलाक मजकूर है तो गोया निकाह भी मजकूर है, क्योंकि निकाह के बगैर तो तलाक नहीं हो सकती, तो यहां पर भी शर्त के हक में तो निकाह मजकूर हुआ, लेकिन जजा जो थी कि फांति तालिकुन सलासन, उसके हक में तो निकाह मजकूर नहीं हुआ, लिहाजा ये जजा भी उस औरत के हक में मुनाकिद नहीं हुई।
जी।
जब जजा मुनाकिद नहीं हुई तो यमीन मुनाकिद नहीं हुई, क्योंकि यमीन तो नाम है शर्त और जजा के मजमुए का। जब यमीन मुनाकिद नहीं हुई, चुनाचे इसने आदमी ने बाद में इस अजनबी औरत से निकाह कर लिया और निकाह के बाद इसने इसको तलाक दे दी, तो इसने तो क्या कहा था, अगर मैं तुझे तलाक दूं तो तुझे तीन तलाकें हैं, लेकिन यहां तीन तलाकें वाकई नहीं होंगी क्योंकि जजा इस औरत के हक में मुनाकिद ही नहीं हुई थी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वफी मसअलती तलाकी, और तलाक के मसले में इन नमा यजहरु फी हक़्क़ी शर्ती, निकाह जो है वो जाहिर होगा शर्त के हक में, दूनल जजा न के जजा के हक में। ये इमाम जुफर को जवाब दे रहे हैं कि आपने तसर्री के मसले को तलाक के मसले पर कयास किया है, वहां तलाक के मसले भी निकाह जो है वो शर्त के लिए तो जाहिर होगा लेकिन जजा के लिए जाहिर नहीं, लिहाजा वो यमीन मुनाकिद नहीं हुई। भाई हा लहा, यहां तक कि अगर इस शख्स ने उस अजनबिया से कहा इन तलक तो किफ अंति तालिकुन सलासन, कि अगर मैंने तुझे तलाक दी तो तुझे तीन तलाकें हैं, वतजव्वजहा वतल्लकहा, फिर इस शख्स ने इस औरत से निकाह कर लिया और उसे तलाक दे दी, ला तुतल्लक सलासन, तो उसको तीन तलाकें नहीं होंगी। यानी इसने एक दी है तो एक ही वाकई होगी, उस शर्त की वजह से तीन नहीं हो जाएंगी क्योंकि ये यमीन इस औरत के हक में मुनाकिद ही नहीं हुई। यह माना है कि ला तुतल्लकु सलासन, तो इस औरत को तीन तलाकें नहीं होंगी। फहाजिही वीजानु मसअलतीना, तो ये हमारे मसले के मिसल है, ये मसाला भी हमारे मसले जैसा ही है, यानी यहां भी यमीन मुनाकिद नहीं होगी। भाई देखो वीजान लफ्ज आया, याद रखो वीजान ये मस्दर है बाबे मुफाला का, जैसे कातला युकातिलु मुकातलतं वकितालन, तो मुफाला और फियाल ये मस्दर आते हैं बाबे मुफाला से। भाई तो ये वीजान वाजना युवाजिनु मुवाजनतं वीजानन, तो वीजान का माना है किसी के हम वजन होना, किसी के बराबर होना, मुराद यहां मिसल है क्योंकि मिसल भी दूसरी चीज के बराबर होता है, उस जैसा होता है। तो कहते हैं फहादी ही वीजानु मसअलतीना, तो ये मसला भी हमारे मसले के मिसल है, हमारे मसले के जैसा है। आगे देखिए वमन काला कुल्लु ममलूकिन लिहुर्रुन यातिकु उम्महातु औलादिही व मुदब्बरुहु व अबीदुहु। भाई देखिए ये दो तीन मसाइल साहिब हिदाया जिक्र फरमाएंगे, आगे चंद सत्रों के बाद नया बाब शुरू हो रहा है, बाबुल यमीनी फिल बैई व शिराई व तजव्वुजी व गैर ज़ालिक। तो यहां ये जो वमन काल कुल्लु ममलूकिन लिहुर्रुन, यहां से लेकर इस बाब के आखिर तक लिमा बैयन्ना तक, ये तीन चार सत्रों में जो मसले जिक्र करेंगे साहिब हिदाया, याद रखो इनके अंदर न तालीक जिक्र है और न यमीन जिक्र है, और किताब चल रही है किताबुल ऐमान। भाई तो ये दो तीन मसाइल जो जिक्र फरमाएंगे साहिब हिदाया, और शारहीन फरमाते हैं कि इन मसाइल का ताल्लुक यमीन से नहीं है क्योंकि इनमें यमीन का जिक्र ही नहीं। हां सिर्फ तबान साहिब हिदाया ने इनको जिक्र फरमा दिया कि अगर इस तरह का मसला पेश आ जाए और उसको यमीन में जिक्र कर दिया जाए तो फिर उसका क्या हुक्म होगा वो यहां से मालूम हो सकता है। तो यहां तो यमीन जिक्र नहीं, लेकिन अगर यमीन में इनको जिक्र करेंगे तो उसका क्या हुक्म होगा वो यहां से मालूम हो जाएगा। तो कहते हैं वमन काल कुल्लु ममलूकिन ली हुर्रुन, भाई एक आदमी ने कहा कुल्लु ममलूकिन ली हुर्रुन, मेरा हर ममलूक आजाद है, तो इससे कौन कौन से गुलाम उसके आजाद होंगे और कौन से गुलाम आजाद नहीं होंगे, तो आपको बतलाएंगे कि इस सूरत में इसकी जितनी उम्मे वलद हैं वो भी आजाद हो जाएंगी, जितने मुदब्बर हैं वो भी आजाद हो जाएंगे, और जितने आम गुलाम या बांदियां हैं वो सब भी आजाद हो जाएंगे। जब इसने क्या कहा है कुल्लो ममलूकिन लिहुर्रुन, मेरा हर ममलूक आजाद है, तो ये उम्महात औलाद मुदब्बर और आम गुलाम और बानियां सब आजाद हो जाएंगे। हां मुकातब आजाद नहीं होगा, मुकातब के लिए बाकायदा नियत करेगा कि मुकातब की भी वो नियत साथ कर लेता है तो फिर मुकातब आजाद होगा, वैसे नहीं। वजह ये क्योंकि ये जो मुदब्बर है या उम्मे बलद है या आम गुलाम है, इनके अंदर इस आका की मिल्कियत है, रकबा के एतबार से भी और यद यानी कब्जे के एतबार से भी। आका की इनके अंदर मिल्कियत है रकबा के एतबार से भी, यानी ये आका के गुलाम और बांदियां हैं, और नीज कब्जे के एतबार से भी आका की मिल्कियत है कि आका इनसे खिदमत ले सकता है, इनसे इजारा वगैरह करवा सकता है, कोई भी काम करवा सकता है। तो ये रकबा भी आका की और कब्जा भी आका का, जबकि मुकातब जो है उसके अंदर रकबा तो आका की होती है लेकिन कब्जा आका का नहीं होता। मैंने आपको बतलाया था मुकातब आजाद आदमी की तरह है, आका इसे जबरन खिदमत नहीं ले सकता, ये जाएगा जाकर पैसे कमाकर लाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। और नीज इसी तरह अगर मुकातबा बांदी है तो आका के लिए उससे सोहबत जायज नहीं, क्योंकि आका का अब मुकातब और मुकातबा पर कब्जा बाकी नहीं है। तो मालूम हुआ आम गुलाम है या मुदब्बर है या उम्मे वलद, उसके अंदर रकबा के अंदर भी आका की मिल्कियत और कब्जे के अंदर भी आका की मिल्कियत, जबकि मुकातब और मुकातबा के अंदर रकबा के अंदर तो आका की मिल्कियत है, ये गुलाम और बांदियां तो हैं लेकिन कब्जे के अंदर आका की मिल्कियत नहीं है। तो इनकी मिल्कियत में नुकसान आ गया, कमी आ गई, जब कमी आ गई तो अब इनके लिए बाकायदा नियत करेगा तो तब ये आजाद होंगे, वैसे आजाद नहीं होंगे। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा कुल्लू ममलूक इन ली हुर्रुन की मेरा हर ममलूक आजाद है, यातिकु उम्महातु औलादिही व मुदब्बरुहु अबीदुहु, तो उस शख्स की उम्महात औलाद और उसके मुदब्बर और उसके गुलाम जो हैं वो आजाद हो जाएंगे, लिवजूद इल इजाफतिल मुतलकति फीहा उलाई, इसलिए क्योंकि मुतलक इजाफत पाई जा रही है इनमें, इनमें इजाफत मुतलकन यानी कामिल तौर पर पाई जा रही है, सिर्फ रकबा के एतबार से नहीं, सिर्फ कब्जे के एतबार से नहीं, बल्कि दोनों एतबार से इनकी निस्बत आका की तरफ है, ये रकबा भी आका का और कब्जा भी आका का, तो इनके अंदर मुतलक निस्बत पाई जा रही है आका की तरफ। तो कहते हैं लिवजूदिल इजाफतिल मुतलकति फीहा उलाई, इसलिए क्योंकि इनके अंदर मुतलक इजाफत पाई जा रही है यानी कामिल दर्जे की मिल्कियत है, कामिल इजाफत है इनके अंदर, इदिल मिल्कु साबितुन फीहिम रकबतन व यदन, इसलिए क्योंकि इनके अंदर मिल्कियत साबित है रकबा के एतबार से, इनी जात के एतबार से भी, व यदन और कब्जे के एतबार से भी, वला यातिकु मुकातबुहु इल्ला अन यन्वियहुम, और इसके मुकातब आजाद नहीं होंगे, इल्ला अय्यन्वियहुम, मगर यह कि यह उनकी नियत कर ले, लिअन्न अल-मिल्क गैरु साबितिन यदन, इसलिए क्योंकि आका की मिल्कियत जो है वो कब्जे के एतबार से इस मुकातब में साबित नहीं है, वलिहादा ला यमलिकु अक्सा बहू, और इसीलिए आका मुकातब की कमाइयों का मालिक नहीं होता, मुकातब जो कमाई करता है उसका मालिक आका नहीं है, वो लाएगा अपनी किस्तें अदा करेगा हर महीने जो उसने रकम अदा करनी है और अपने आप को आजाद करवाएगा, तो उसकी कमाई उसकी अपनी मिल्कियत है। तो कहते हैं वलिहादा ला यमलिकु अक्सा बहू, और इसीलिए आका उसकी कमाइयों का मालिक नहीं है, वला यहिल्लु लहू वत्उल मुकातबती, और इसी वजह से आका के लिए मुकातबा से वती भी जायज नहीं, क्योंकि कब्जे के एतबार से आका की मिल्कियत नहीं है, बिखिलाफ उम्मिल वलदी वल मुदब्बरती, बखिलाफ उम्मे वलद और मुदब्बरा के, कि उनके अंदर कब्जा भी आका का होता है, उनकी कमाइयों का भी आका हकदार होता है, और उम्मे वलद और मुदब्बारा के साथ वती का भी आका मालिक है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफी उम्मिल वलदी वल मुदब्बरती, बखिलाफ उम्मे वलद और मुदब्बरा के, फख्तलतिल इजाफतु, तो इजाफत के अंदर खलल आ गया, मुकातब की जो आका की तरफ इजाफत और निस्बत हो रही है कि आका का ममलूक है, उसमें खलल आ गया, खराबी आ गई यानी कमी आ गई, रकबा के एतबार से तो आका इसका मालिक है लेकिन कब्जे के एतबार से इसका मालिक नहीं है। तो कहते हैं फख्तलतिल इजाफतु, तो मुकातब की जो इजाफत हो रही है, निस्बत हो रही है आका की तरफ, उसमें खलल आ गया, फला बुद्दा मिन नियति, तो नियत जरूरी है, इनकी नियत जरूरी है आजादी के लिए। आगे देखिए वमन काल अली निस्वतिल लहू हादिही तालिकुन औ हादिही व हादिही तुल्लिकतिल अखीरतु व लहुल खियारु फिल उलयैन, सूरत मसला यह कि एक शख्स ने अपनी बीवियों से कहा हादिही तालिकुन औ हाजिही व हाजिही, पहली दो के दरमियान औ को लेकर आया, और अव आता है अहदुल मजकूरैन के लिए कि दो चीजों में से एक मुराद है, दोनों मुराद नहीं। और आखिरी से पहले वो वाव लेकर आया और वाव आता है जमा के लिए कि दो चीजों को हुक्म के अंदर जमा कर देता है। मैंने कहा जा अनी जैदुन व अमरुन, तो इसका मतलब है आने में जैद और अमर दोनों शरीक हैं, दोनों जमा हैं। तो अब सूरत ये, एक शख्स ने अपनी बीवियों से कहा हाजी तालिकुन अव हाजी ही व हाजी ही, तो अब क्या हुक्म होगा, किस किस बीवी को तलाक होगी? तो कहते हैं तीसरी को तो तलाक हो गई, तीसरी जो है उसको तलाक हो गई और पहली दो में से एक को तलाक हुई और उस एक की तायीन खावंद के जिम्मे है, वो मुतायन करके बताए किस वाली को उसने तलाक का इरादा किया है, तो वो एक की तायीन कर देगा। उस एक को भी तलाक हो गई, यानी पहली दो में से एक को भी तलाक हो गई और तीसरी को भी तलाक हो गई। तो कहते हैं वमन काला लिनिस्वति लहू, और जिस शख्स ने अपनी बीवियों से कहा हादिही तालिकुन औ हादिही व हाजिही तुल्लिकतिल अखीरतु, तो आखिरी बीवी जो है उसको तलाक हो गई, व लहुल खियारु फिल उलयैनी, और इस खावन को इख्तियार है पहली दो में, लिअन्न कलिमता औ लिइस्बाति अहदिल मजकूरैनी, इसलिए क्योंकि कलिमा औ जो आया ये दो मजकूरा चीजों में से एक के इस्बात के लिए होता है, यानी पहली दो में से एक के अंदर वो तलाक को साबित कर रहा है। तो ये जो आओ आता है ले इस बात ही अहदिल मजकूरैनी, ये दो मजकूरा चीजों में से एक के इस बात के लिए होता है, वकद अदखलहा बैनल उलयैनी, और ये कलिमा औ जो है इसको दाखिल किया है इस शख्स ने उलयैन पहली दो बीवियों के दरमियान, सुम्मा तफसालिसता अलल मुतल्लकती, मानो वो पहली दो में से एक को तलाक है, दोनों को नहीं, दोनों में से एक को तलाक है, तो वो जो मुतल्लका है उस पर उस आखिरी का आतफ कर दिया। आखिरी बीवी से पहले क्या जिक्र किया, वो वो किस लिए आता है, आतफ के लिए, और वो हुक्म के अंदर मुशारकत का फायदा देता है कि जो माकबल का हुक्म है वही वो के मां बाद का हुक्म है। जा अनी जैदुन व अमरुन, ये देखो जैद का क्या हुक्म है कि वो आया है, जा आ जैदुन, तो व अमरुन, अमरुन का भी वही हुक्म है जो माकबल जैद का है। तो यहां पर भी आखिरी में क्या कहा, व हाजी ही, तो ये हाजी ही का वही हुक्म है जो पहली दो में से एक का हुक्म है, और वो एक क्या है, मुतल्लका, तो ये पहली दो में से एक मुतल्लका है और उसी पर यह तीसरी का आतफ हो गया, तो यह भी क्या हो गई, मुतल्लका हो गई। तो कहते हैं सुम्मा तफसालिसता अलल मुतल्लकती, फिर इस तीसरी का आतफ किया उसने उस मुतल्लका पर, यानी वो जो पहली दो में से मुतल्लका है उस पर इस तीसरी का आतफ किया, लिअन्नल अत्फ लिल मुशारकति फिल हुक्म, इसलिए क्योंकि आतफ जो है वो हुक्म के अंदर मुशारकत के लिए होता है कि वहां हुक्म के अंदर मुशारकत मकसूद होती है। फयख्तस्सु बिमहल्लिही, लिहाजा ये आतफ खास होगा महल हुक्म के साथ। ये जो वहाजी ही तीसरी बीवी है इसका आतफ माकबल में जिसके लिए हुक्म साबित हो रहा है उस पर आतफ होगा, और वो तो दोनों में से एक है और वो मुतल्लका है, तो उस पर इस तीसरी का भी आतफ हुआ तो इस तीसरी का भी वही हुक्म हो जाएगा, ये भी मुतल्लका हो जाएगी। तो कहते हैं फिर देखिए तर्जमा, कहते हैं लिअन्न अल-अत्फ लिल-मुशारकति फिल हुक्मी, इसलिए क्योंकि आतफ जो है वो हुक्म में मुशारकत के लिए होता है, फयख्तस्सु बिमहल्लिही, लिहाजा यह आतफ खास होगा उस हुक्म के महल के साथ, यानी उस एक बीवी के साथ जिस पर तलाक वाकई हो रही है, फयख्तस्सु बिमहल्लिही, तो यह आतफ खास होगा उस हुक्म के महल यानी मुतल्लका के साथ, फसारा कमा इदा काला, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इसने कहा है, इहदा कुमा तालिकुं वहादिही, उसने कहा तो क्या है, हादिही तालिकुन औ हाजिही वहाजिही, लेकिन यूं ही समझो गोया इसने यूं कहा है, इहदा कुमा तालिकुं वहाजिही, इहदा कुमा तालिकुन, तुम दोनों में से एक को तलाक है, वहाजिही और इस तीसरी को, तो तीसरी को तलाक हो जाएगी और पहली दो में से एक को। वकदा इदा काल अली अबी दिही, और इसी तरह जब किसी शख्स ने अपने गुलामों से कहा हादा हुर्रुन औ हाजा व हाजा, उसी तरह पहले दो के दरमियान औ लाया और तीसरे से पहले वाव लाया, तो यहां पर भी तीसरा जो है वो तो आजाद हो जाएगा और पहले दो के अंदर इसको इख्तियार है किसी एक की तायीन कर दे, वो भी आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वकदा इदा काल अली अबीदही, और इसी तरह है जब किसी शख्स ने अपने गुलामों से कहा हादा हुर्रुन औ हादा वहादा, कि ये आजाद है या ये और ये, अतकल अखीरु तो तीसरा आजाद हो जाएगा, वलहुल खियारु फिल उलयैन लिमा बैन्ना, और इसको इख्तियार होगा पहले दो में, लिमा बैन्ना उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि पहले दो में औ आया है और औ अहदुल मज़कूरैन के लिए होता है। आगे देखिए बाबुल यमीन फिल बैअ व शिराअ व तज़व्वुज वगैर ज़ालिक, ये बाब है उस कसम के बयान में जो बैअ यानी बेचने के बारे में हो, व शिराअ और खरीदने के बारे में हो, व तज़व्वुज और निकाह के बारे में हो, वगैर ज़ालिक और इनके अलावा, यानी इस बाब में ये जिक्र फरमाएंगे साहिब हिदाया कि अगर कोई शख्स यमीन के अंदर बैअ या शिरा या निकाह वगैरह को जिक्र करे तो उसका क्या हुक्म है भाई। तो कहते हैं बाबुल यमीन फिल बैअ व शिरा व तज़व्वुज वगैर ज़ालिक, ये बाब है उस यमीन के बारे में जो बैअ शिरा और तज़व्वुज वगैरह के बारे में हो, व मन हलफ ला यबीउ औ ला यश्तरी औ ला युआजिरु फवक्कल मन फअल ज़ालिका लम यहनस। सूरत मसला ये, एक शख्स ने कसम उठा ली कि वल्लाह मैं बैअ नहीं करूंगा यानी बेचने का फेल नहीं करूंगा, या मैं शिरा यानी खरीदने का फेल नहीं करूंगा, या मैं इजारे का फेल नहीं करूंगा। इजारा कहते हैं किसी को कोई चीज किराए पर देना या किराए पर किसी से कोई चीज लेना, इसको क्या कहते हैं इजारा। तो लिहाजा एक शख्स ने कसम उठा ली कि वो बैअ या शिरा या इजारे वगैरह का फेल नहीं करेगा, और फिर उसके बाद इसने किसी और को वकील बना दिया कोई चीज बेचने के लिए या खरीदने के लिए या इजारे के लिए, और फिर इसके वकील ने वो फेल कर लिया, तो क्या ये शख्स हानिस होगा? कहते हैं नहीं, यहां ये शख्स हानिस नहीं होगा। बात समझ में आ गई भाई? याद रखना आगे कई किस्म के अफ़ाल जिक्र होंगे, बाज़ अफ़ाल वो हैं जिनमें नियाबत जारी होती है और बाज़ अफ़ाल वो हैं जिनमें नियाबत जारी नहीं होती। नियाबत यानी नाइब होना। देखो आप किसी को वकील बनाते हैं एक काम के लिए तो आप उसको अपना नाइब बना रहे हैं, तो बाज़ अफ़ाल हैं उनमें नियाबत यानी तौकील जारी होती है, वहां आप किसी को वकील बना सकते हैं, जैसे बैअ शिरा और इजारा वगैरह है। कभी आपको गाड़ी की जरूरत है, आप खुद खरीदने नहीं जाते बल्कि अपने वकील को भेज देते हैं, किसी को कह देते हैं कि मेरे लिए गाड़ी खरीद लो, तो ये आपका वकील हुआ। मालूम हुआ बैअ शिरा और इजारा के अंदर नियाबत जारी होती है, जबकि बाज़ अफ़ाल ऐसे हैं कि उनके अंदर नियाबत जारी नहीं होती भाई, नियाबत जारी नहीं होती। मसलन खाना या पीना है, कोई आप किसी को वकील नहीं बना सकते अपने खाने और पीने का, क्योंकि वकील के खाने या पीने से आपका पेट नहीं भरेगा भाई। तो खाना पीना ऐसा फेल है जिसमें नियाबत जारी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद याद रखना कि जिन अफाल के अंदर नियाबत जारी होती है इनमें से बाज वो अफाल हैं कि जहां हुकूक का ताल्लुक वो अकद करने वाले से ही यानी वकील से ही होता है। अगर वकील ने अकद किया है तो हुकूक अकद का ताल्लुक भी वकील से ही होता है, जैसे बैउ शिरा वगैरह। बैउ शिरा वगैरह तो बैउ शिरा और इजारे में नियाबत जारी होती है, यानी इसमें आप किसी को वकील बना सकते हैं और इसमें हुकूक अकद का ताल्लुक वकील से ही होता है। भाई देखो ना, जब आप किसी से बैउ करते हैं तो बाय की जिम्मेदारी होती है मबिया हवाले करे, बाय की जिम्मेदारी होती है कि मबिया में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, और मुश्तरी की जिम्मेदारी होती है कि उसको समन अदा करने पड़ेंगे, उससे समन का मुतालबा होगा। तो देखो ये है हुकूक अकद। तो यहां पर ये जो बैअ शिरा वगैरह हैं इनमें हुकूक अकद का ताल्लुक भी वकील से यानी अकद करने वाले से होता है। जिस शख्स ने ये अकद किया है उसी से मबीए या समन वगैरह का मुतालबा किया जाता है, मुअक्किल से आकर कोई मुतालबा नहीं कर सकता और ना मुअक्किल जाकर इन चीजों का मुतालबा कर सकता है। अगर मुअक्किल जाकर मुतालबा भी करेगा दूसरे शख्स से तो वो दूसरा शख्स कहेगा कि भाई मेरा तो आपके साथ आकद नहीं हुआ, मेरा तो वो जो आपका वकील है उसके साथ आकद हुआ था, लिहाजा ये मबीहा मैं उसी के हवाले करूंगा, मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। तो ये जो बैअ शिरा और इजारा वगैरह हैं इनमें हुकूक अकद का ताल्लुक अकद करने वाले से होता है, यानी अगर वो वकील है तो हुकूक अकद का ताल्लुक इसी वकील से होगा, मुअक्किल से नहीं। तो लिहाजा बेउ शिरा और इजारा ऐसे अफआल हैं जिनमें नियाबत भी जारी होती है और जिनके अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक अकद करने वाले से होता है, मुअक्किल से नहीं। लिहाजा कोई शख्स कसम खा ले कि वल्लाह मैं बेउ शिरा या इजारा नहीं करूंगा और फिर किसी को अपना वकील बनाकर यह अमल करवा ले, तो यह शख्स हानिस नहीं है, क्योंकि इसने तो बेउ शिरा का फेल नहीं किया, इसके वकील ने किया है। और नीस हुकूक अकद का ताल्लुक भी वकील से है, इस मुवक्किल से नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में निकाह तलाक और एताक वगैरह जो हैं, निकाह तलाक और एताक, उसमें भी नियाबत जारी होती है। कोई शख्स दूसरे को कहता है कि मेरा निकाह करवा दो, तो ये उसका वकील होकर निकाह करवाता है। कोई शख्स दूसरे से कहता है कि मेरी बीवी को तलाक दे दो, तो वो वकील बनकर इसकी बीवी को तलाक दे देता है। कोई शख्स दूसरे से को वकील बनाता है कि मेरे फुलां गुलाम को आजाद कर दो, तो वो उसका वकील बनकर उस गुलाम को आजाद कर देता है। मालूम हुआ निकाह तलाक और एताक के अंदर भी नियाबत जारी होती है, लेकिन इनमें हुकूक अकद का ताल्लुक वकील से नहीं होता, मुअक्किल से होता है। मसलन एक आदमी जब निकाह करता है तो बीवी उससे महर का मुतालबा कर सकती है कि मुझे इसी वक्त क्या करो, महर अदा करो। तो यहां पर भी, तो यहां पर जब किसी ने दूसरे को वकील बनाया कि मेरा फुला जगह निकाह करवा दो, तो ये जो वकील है ये सिर्फ सफीर है और मुअब्बिर है, ये सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा है और लफ्जों को जुबान से अदा कर रहा है। हुकूक अकद का ताल्लुक उस मुअक्किल से है, यानी जिसका निकाह करवाया जा रहा है, तो उस मुअक्किल से महर का मुतालबा हो सकता है, इस वकील से महर का मुतालबा नहीं हो सकता। इसी तरह तलाक और एताक भी है, इनमें भी हुकूक का ताल्लुक मुअक्किल से होता है, वकील से नहीं होता। लिहाजा एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, या मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, या मैं अपने गुलाम को आजाद नहीं करूंगा, और फिर इसने अपने वकील के जरिए इन कामों में से कोई काम कर लिया, तो यहां पर, तो यहां पर यह शख्स हानिस हो जाएगा। बेउ शिरा अपने वकील के जरिए करवाएगा तो हानिस नहीं, क्योंकि वहां हुकूक का ताल्लुक वकील से था, और निकाह और तलाक और एताक यह अपने वकील के जरिए करवाएगा तो हानिस हो जाएगा, क्योंकि यहां वकील सिर्फ पैगाम रसा है, हुकूक का ताल्लुक मुअक्किल से ही है। भाई देखिए भाई, अब किताब पर कहते हैं वमन हलफला यबीउ औला यश्तरी औला युआजिरु, और जिस शख्स ने कसम उठा ली कि वो नहीं बेचेगा या वो नहीं खरीदेगा, औला युआजिरु या वो इजारे वाला अमल नहीं करेगा, फवक्कल मन फअला ज़ालिका, तो इसने वकील बना दिया उस शख्स को जिसने ये काम किया, लम यहनस, तो ये हानिस नहीं होगा, लिअन्नल अक़्द वुजिद मिनल आक़िदी, इसलिए क्योंकि यह अक़द जो है वह आक़िद की तरफ से पाया गया है, यानी वो जो वकील था, याकद इसने नहीं किया बल्कि किसने किया है, वकील ने। कहते हैं लिअन्न अल-अक़्द वुजिद मिनल आक़िदी, इसलिए क्योंकि यह अक़द जो है आक़िद की तरफ से पाया गया है, हत्ता कानतिल हुकूक अलैही, यहां तक कि हुकूक भी उसी आक़िद पर होते हैं, हुकूक अकद का ताल्लुक भी आकिद से होगा यानी वकील से होगा। तो कहते हैं हत्ता कानतिल हुकूक अलैही, यहां तक कि इस अकद के हुकूक भी उसी आकिद पर होते हैं, वलिहादा लौ कानल आकिद हुवल हालिफ, इसीलिए अगर यह आकिद जो है जिसने अकद किया है अगर यही कसम खाने वाला भी होता, तो यह नसुफी यमीन ही, तो यह अपनी कसम के अंदर हानिस हो जाता, फलम यूजद मा हुआ शर्त, तो वो चीज नहीं पाई गई जो शर्त है, वह हुआ अल-अक़्द मिनल आमिरी, और वो आमिर की तरफ से आकद है, तो लिहाजा ये हानिस नहीं होगा। आमिर जो हुक्म देने वाला है, जिसने वकील को हुक्म दिया है बेउ शिरा या इजारे का, तो ये जो आमिर है इसने कसम उठाई थी, और इसने क्या कसम उठाई थी, मैं बेउ शिरा या इजारा नहीं करूंगा, तो इसकी तरफ से तो यह फेल नहीं पाया गया, इसके वकील ने किया है, तो जब इसकी तरफ से यह फेल नहीं पाया गया तो यह हानिस भी नहीं हुआ, क्योंकि हानिस होने के लिए शर्त थी कि यह फेल इसकी तरफ से पाया जाए, यानी कसम खाने वाले की तरफ से। तो कहते हैं फलम यूजद मा हुआ शर्त, तो वो चीज नहीं पाई गई जो शर्त थी, वह हुआ अल-अक़्द मिनल आमिरी, और वो इस अक़द का होना आमिर की तरफ से, वह इन नमस साबित लहू हुक्मुल अक़्दी, और वो चीज जो साबित हुई है इस आमिर के लिए वह अक़्द का हुक्म है, आमिर के लिए सिर्फ आकद का हुक्म साबित होगा। मसलन एक शख्स ने दूसरे को भेजा कि जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद कर लाओ जी। तो गाड़ी खरीदने का अमल ये आमिर ने नहीं किया, अलबत्ता आकद का हुक्म इसके लिए साबित हो जाएगा। आकद का क्या हुक्म था, कि जब कोई बै करता है तो मबीए का मालिक बन जाता है। तो यहां पर ये जो मुवक्किल है ये उस गाड़ी का मालिक बन जाएगा। अकद का हुक्म तो इसके लिए साबित हुआ है, लेकिन यह अकद करने वाला भी नहीं और हुकूक अकद का ताल्लुक भी इससे नहीं है। यह माना है वह इन नमस साबित लहू हुक्मुल अकदी, और ये जो आमिर है इसके लिए तो अकद का हुक्म यानी मिल्कियत वगैरह ही साबित है। इल्ला अयन वालिका, मगर यह कि ये इसकी नीयत कर ले, भाई इन्होंने आपको बतला दिया अगर कोई शख्स ब्याव शिरा या इजारे की कसम खा ले कि मैं ये फेल नहीं करूंगा और फिर वकील के जरिए करवा ले तो हानिस नहीं होगा। लेकिन अगर ये वकील की भी नियत कर लेता है, इसने ये कसम खाई कि मैं ब्याव शिरा और इजारे का फेल खुद भी नहीं करूंगा और किसी और के जरिए भी नहीं करवाऊंगा, तो फिर इस सूरत में वकील से करवाएगा तो हानिस होगा, वैसे हानिस नहीं। तो बाकायदा वकील की नियत करेगा तो फिर हानिस होगा। यह माना है इल्ला अयन वियाजालिका, मगर यह कि कसम खाने वाला इसकी नियत कर ले कि यह फेल खुद भी नहीं करेगा और वकील के जरिए भी नहीं करवाएगा। लिअन नफी ही तशदीदन, इसलिए क्योंकि इसके अंदर सख्ती करना है, यह खुद अपने लिए मामले को और सख्त बना रहा है। इसने जो कसम खाई थी उसमें तो सिर्फ ये खुद फेल करेगा ब्याव शिरा या इजारे का, तब हानिस होगा, लेकिन इसने वकील की भी नियत कर ली, अब तो मामला और भी सख्त हो गया, अब तो वकील भी इसके लिए ब्याव शिरा करेगा तो ये फिर भी हानिस हो जाएगा। तो इसने अपने लिए सख्ती को बढ़ा दिया, लिहाजा नियत कर सकता है। तो कहते हैं लिअन नफी ही तशदीदन, इसलिए क्योंकि इसके अंदर सख्ती करना है, यानी अपने ऊपर वो सख्ती कर रहा है। अब यकून अल हालिफु ज़ा सुल्तानी, या ये कि वो कसम खाने वाला साहिब इख्तियार हो, ज़ा सुल्तान, भाई जैसे कहते हैं फुलां जो है जू माल है, जू माल का क्या माना माल वाला, और हालत नस्बी में क्या कहेंगे ज़ा माल, तो यहां पर भी है ज़ा सुल्तान, यानी जो इख्तियार वाला है, जो मनसब और ओहदे वाला है, मुराद है बादशाह या हाकिम या काजी, बादशाह हाकिम या काजी वगैरह जो ऊंचे ओहदे वाले हैं, और ऊंचे ओहदे वाले आप जानते हैं कि वो बैव शिरा का फेल खुद नहीं करते बल्कि वो किसी और को भेजकर ये बैव शिरा का फेल करते हैं। तो अगर किसी ऊंचे ओहदे वाले ने इस तरह की कसम खा ली तो फिर इस सूरत में उसके लिए अगर वकील भी बेउशिरा करेगा तो ये हानिस हो जाएगा। वजह यह कि इसकी आदत और इस आदमी का तरीका ही यह है, ये खुद तो बेउशिरा करता ही नहीं, अपने वकील के जरिए करता है और फिर ये कसम खा रहा है, तो मालूम हुआ जो इसकी आदत है उससे अपने आप को रोकना चाहता है जी। कसम खाने का मकसद अपने आप को रोकना नहीं है, खुद तो यह करता ही नहीं है यह बै वगैरह भाई, बल्कि ये अपनी आदत से अपने आप को रोकना मकसूद है, यानी जो इसका मुताद तरीका है भाई, लिहाजा ये अपने वकील के जरिए बैव शिरा करवाएगा तो ये हानिस हो जाएगा, और अगर खुद भी करेगा फिर भी हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं अव यकून अल हालिफु ज़ा सुल्तानीन, मगर ये के कसम खाने वाला जो है वो साहिब इख्तियार हो, साहिब मनसब हो, ला यतवल्लल अक़्द बिनफ्सिही, जो खुद अक़्द नहीं करता, वो ऐसा साहिब इख्तियार है, ला यतवल्लल अक़्द बिनफ्सिही, जो अकद खुद नहीं करता, अकद का खुद मुतवल्ली नहीं होता बल्कि वकील के जरिए करवाता है, तो इसके लिए वकील भी अगर ये फेल करेगा तो ये हानिस हो जाएगा। लिअन्नहु यमनउ नफ्सहु अम्मा यअतादुहु, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को रोक रहा है, अम्मा यअतादुहु, उस चीज से जो इसकी आदत है, और इसकी आदत तो क्या है वकील बनाना, तो ये उससे अपने आप को कसम खाकर गोया अपने आप को रोक रहा है, लिहाजा वकील भी इसके लिए बैव शिरा करेगा तो ये हानिस हो जाएगा। ये माना है लिअन्नहु यमनउ नफ्सहु अम्मा यअतादुहु, इसलिए क्योंकि ये अपनी जात को रोक रहा है उस चीज से जिसकी इसको आदत है। आगे देखिए वमन हलफ ला यतज़व्वजु अव ला युतल्लिकु अव ला युअतिकु फवक्कल बिदालिका हनीसा, मैंने आपको बतलाया कि बैउ शिरा के अंदर भी नियाबत जारी होती है और निकाह तलाक वगैरह में भी नियाबत जारी होती है, इनमें आदमी दूसरे को वकील बना सकता है, लेकिन बैउ शिरा में हुकूक का ताल्लुक आकिद से होता है, लिहाजा अगर वकील कर भी लेगा बैउ शिरा तो वो कसम खाने वाला हानिस नहीं, लेकिन निकाह तलाक वगैरह में हुकूक अकद का ताल्लुक मुअक्किल से होता है, लिहाजा निकाह और तलाक वगैरह की कसम खाई तो अगर अपने वकील के जरिए भी निकाह करेगा या तलाक देगा तो इस सूरत में भी यह हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं वमन हलफ ला यतज़व्वजु, और जिस शख्स ने कसम खा ली कि वो निकाह नहीं करेगा, और ला युतल्लिकु या वो तलाक नहीं देगा, और ला युअतिकु या वो आजाद नहीं करेगा, फवक्कल बिज़ालिका, फिर इसने इस पर वकील बना दिया, इसने किसी दूसरे को वकील बना दिया, हानिसा तो हानिस हो जाएगा, यानी उस वकील ने वो फेल कर लिया, सिर्फ वकील बनाने से हानिस नहीं होगा, बज़ाहिर इबारत से लगता है फवक्कल बिज़ालिका हानिसा, किसने वकील भी बना दिया तो हानिस हो जाएगा, नहीं, माना यह है इसने वकील बना दिया और वकील ने वो फेल कर लिया तो फिर यह हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं फवक्कल बिज़ालिका, तो इसने उस पर वकील बना दिया हानिसा, तो यह हानिस हो जाएगा, लिअन्न अल-वकील फी हादा सफीरुन व मुअब्बिरुन, इसलिए क्योंकि वकील इसके अंदर यानी निकाह तलाक वगैरह के अंदर सफीरुन, ये सिर्फ सफीर है, पैगाम पहुंचाने वाला है, वह मुअब्बिरुन, और सिर्फ अल्फाज की जुबान से ताबीर करने वाला है, अल्फाज को जुबान से अदा करने वाला है। तो मसलन निकाह के अंदर एक शख्स दूसरे को अपना वकील बनाकर भेजता है, तो ये वकील जो है सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा है, और ये सिर्फ अल्फाज को अपनी जुबान से अदा कर रहा है, हुकूक का ताल्लुक इससे, इस वकील से नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल-वकील फी हादा सफीरुन व मुअब्बिरुन, इसलिए क्योंकि वकील इसके अंदर पैगाम रसा है और जुबान से अल्फाज को ताबीर करने वाला है, वलिहादा ला युज़ीफुहु इला नफ्सिही बल इलल आमिरी, और इसीलिए वकील इस हकत की निस्बत अपनी तरफ नहीं करता बल्कि आमिर की तरफ करता है। एक आदमी ने दूसरे को वकील बनाया कि जाकर मेरा वहां निकाह पढ़ा दो, मेरा निकाह करवा दो, तो यह वकील चला गया, अब वकील जाकर यह नहीं कहेगा कि मैं इस औरत से निकाह करता हूं, बल्कि मुवक्किल का नाम लेगा, मैं फलां का इस औरत से निकाह करवाता हूं। तो मालूम हुआ वकील सिर्फ पैगाम रसा है, सिर्फ बात जुबान से अदा कर रहा है, और हुकूक का ताल्लुक मुवक्किल से है, इसीलिए मुवक्किल का यह बाकायदा निकाह तलाक और एहताक वगैरह में उसका नाम जिक्र करता है, उसकी तरफ अकद की निस्बत करता है कि उसके साथ मैं निकाह करवाता हूं, या उसकी तरफ से मैं तलाक देता हूं, या उसकी तरफ से मैं गुलाम आजाद करता हूं। तो कहते हैं वलिहादा ला युज़ीफुहु इला नफ्सिही, और इसीलिए वकील इस अकद की निस्बत अपनी तरफ नहीं करता बल इलल आमिरी, बल्कि हुक्म देने वाले की तरफ निस्बत करता है, वह हुकूकुल अक्द तरजउ इलल आमिरी ला इलैही, और इस अकद के हुकूक जो है वह आमिर की तरफ लौटते हैं, ला इलैही न के वकील की तरफ, यानी मुअक्किल की तरफ हुकूक लौटते हैं न के वकील की तरफ। वलौ काला अनै तो अल्लाह अतकल्लमा बिहा लम युदय्यन फिल क़ज़ाई ख़ासतन, भाई सूरत यह है एक आदमी ने कसम खा ली कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, या मैं तलाक नहीं दूंगा, या मैं एताक नहीं करूंगा, और फिर इसने अपने वकील के जरिए इसने ये अमल करवा लिया, तो आपने इसका हुक्म पढ़ लिया कि इस सूरत में यह शख्स हानिस हो जाएगा, लेकिन वह शख्स कहता है नहीं मैं हानिस नहीं हूं, क्योंकि मैंने जब कहा था कि मैं निकाह नहीं करूंगा, मेरा मतलब था मैं खुद नहीं करूंगा जी। या मैं तलाक नहीं दूंगा, मेरा मतलब था मैं खुद तलाक नहीं दूंगा, या मैंने कहा था एताक नहीं करूंगा, मेरे मतलब था मैं खुद एताक नहीं करूंगा, तो मैंने खुद तो ये फेल नहीं किए, ये तो मेरे वकील ने किए हैं। कहते हैं इस सूरत में दयानतन उसकी तस्दीक की जाएगी, उसका और अल्लाह का मामला है, हम कहेंगे अगर आपकी यही नीयत थी तो मामला इसी तरह है, लेकिन अगर बात काजी तक चली गई तो काजी उसकी तस्दीक नहीं करेगा, काजी उसकी तस्दीक नहीं करेगा भाई। तो यह माना है वलौ काला, और अगर वह कसम खाने वाला कहता है आनई तो अल्लाह अतकल्लम बिही कि मेरी मुराद यह थी कि मैं इस पर खुद तकल्लुम नहीं करूंगा, यानी खुद अपनी जुबान से निकाह या तलाक वगैरह नहीं दूंगा, लम युदय्यन फिल क़ज़ाई ख़ासतन, तो इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी क़ज़ा के अंदर, खास तौर पर क़ज़ा में इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, मालूम हुआ दयानतन इसकी तस्दीक की जाएगी। वसनुशीरु इलल माना फिल फर्की इंशा अल्लाह ताला, वसनुशीरु इलल माना, माना का लफ्ज़ मैंने आपको बतलाया था फिका की किताबों में इल्लत और सबब के माना में आम इस्तेमाल होता है, तो इसकी इल्लत क्या है, इसका सबब क्या है, साहिब हिदायत फरमाते हैं आगे हम फर्क बयान करेंगे, 2-3 सत्रों के बाद ही साहिब हिदायत फर्क बयान करेंगे, तो वहां पर कहते हैं हम इसका सबब बतलाएंगे भाई। तो कहते हैं वसनुशीरु इलल माना फिल फर्की, और अन करीब हम इशारा करेंगे इलल माना इसके सबब की तरह, फिल फर्की किस में, फर्क में, यानी जहां हम फर्क बयान करेंगे इंशा अल्लाह ताला। आगे देखिए वलौ हलफला यज़रिबु अब्दहु औ ला यज़बहु शातहु फअमर गैरहु फफअल यहनसु फी यमीनिही। अब और अफाल आ गए, अफाले हिस्सिया, अफाले हिस्सिया जो आंखों से नजर आए तो उनका बयान, उनमें अगर कोई शख्स कसम खा लेता है तो क्या उसके अंदर भी वकील के करने से वो हानिस होगा या नहीं। तो कहते हैं मसलन एक शख्स ने कहा कि वल्लाह मैं अपने गुलाम की पिटाई नहीं करूंगा, और फिर किसी दूसरे को वकील बनाया कि मेरे गुलाम की पिटाई करो, कहते हैं हानिस हो जाएगा, हानिस हो जाएगा। वजह यह कि इसका फायदा इसी को पहुंच रहा है, फिर गुलाम के दिल में खौफ आ जाएगा, वो इसकी ज्यादा इताअत करेगा, तो लिहाजा वकील का करना भी इस आदमी के करने की तरह ही है, लिहाजा ये हानिस होगा। यह इसी तरह एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं अपनी भेड़ बकरी जिबाह नहीं करूंगा, और फिर इसने किसी और से कहा और उसने इसके लिए भेड़ बकरी जिबाह कर दी, तो इस सूरत में भी यह हानिस हो जाएगा क्योंकि इसका फायदा इसी शख्स को है। और नीज यह गुलाम की पिटाई या बकरी का जिबा करना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके हुकूक का ताल्लुक करने वाले से हो जी। इसके तो कोई हुकूक वगैरह नहीं है, ये कोई आकद वगैरह तो नहीं हो रहा कि जिसके हुकूक हो। भाई बैअ वगैरह के मसले में हुकूक का ताल्लुक आकद से होता था, तो वहां वकील के जरिए करवा लेता था तो हानिस नहीं होता था, लेकिन यहां गुलाम की पिटाई करवाना या बकरी को जिबा करवाना इसके तो कोई हुकूक ही नहीं है, और फायदा भी किसको पहुंच रहा है, मुवक्किल को, और इसके कोई ऐसे हुकूक भी नहीं है जो इस फेल के करने वाले के साथ मुतालिक हो, लिहाजा ये फेल चाहे ये खुद करे फिर भी हानिस हो जाएगा, और अपने वकील के जरिए करवाए तो भी हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं वला हलफला यज़रिबु अब्दहु, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि वो अपने गुलाम की पिटाई नहीं करेगा, औला यज़बहु शातहु या वो अपनी भेड़ बकरी जिबा नहीं करेगा। शात का लफ्ज़ उमूमन तुलबा इसका तर्जमा बकरी के करते हैं, याद रखो शात सिर्फ बकरी को नहीं कहते बल्कि भेड़ बकरी दोनों जिंसों को यह शामिल है भाई। तो कहते हैं या उसने कसम उठाई कि औला यज़बहु शातहु कि वो अपनी भेड़ बकरी को जिबा नहीं करेगा, फअमरा गैरहु फिर इसने किसी दूसरे को हुक्म दिया इस काम का, फफअला तो उसने ऐसा कर दिया, यहनसु फी यमीनिही तो ये शख्स अपनी कसम में हानिस हो जाएगा, लिअन्नल मालिक लहू विलायतु ज़र्बि अब्दिही व ज़बहि शातिही, इसलिए कि जो मालिक होता है उसको अपने गुलाम की पिटाई की विलायत होती है और इसी तरह अपनी भेड़ बकरी के जबा करने की विलायत होती है। जब मालिक खुद अपने गुलाम की पिटाई कर सकता है तो दूसरे को भी अपना नाइब बना सकता है, मालिक जब खुद अपनी भेड़ बकरी को जिबा कर सकता है तो दूसरे को भी अपना नाइब बना सकता है। तो कहते हैं लिअन्न अल मालिक लहू विलायतु ज़र्बि अब्दिही व ज़बहि शातिही, इसलिए क्योंकि मालिक जो है इसको अपने गुलाम की पिटाई और अपनी भेड़ बकरी के ज़िबा की विलायत होती है, फयम लिकु तौलियतहु गैरहु तो ये मालिक है कि गैर को इसका मुतवल्ली बना दे, तौलिया भाई वल्ला युवल्ली तौलियतन किसी दूसरे को किसी काम का जिम्मेदार बनाना, तो मालिक को खुद जब यह इख्तियार है तो यह इख्तियार वो दूसरे को भी दे सकता है, तो फयम लिकु तौलियतहु गैरहु तो यह मालिक है कि गैर को इसका मुतवल्ली बना दे, यानी यह बतलाना चाहते हैं इन अफाल में नियाबत जारी होती है, इनमें आप किसी को वकील बना सकते हैं, लेकिन वकील का करना भी मुवक्किल के करने की तरह ही है, लिहाजा वकील भी करेगा तो यह हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं फयम लिकुतव लियतहु गैरहु तो ये गैर को भी इस काम का जिम्मेदार बनाने का मालिक है, सुम्मा मनफातुहु राजियातुन इलल आमिरी फिर इस काम का नफा जो है आमिर यानी मुअक्किल को लौट रहा है, गुलाम की पिटाई होगी तो गुलाम इसका ज्यादा फरमा बरदार हो जाएगा और बकरी इसके लिए जिबा होगी तो इस आमिर के लिए आसानी हो जाएगी, तो देखो नफा किसको पहुंच रहा है आमिर को, यानी इसका नफा भी आमिर को पहुंच रहा है और नीज यहां कोई ऐसे हुकूक भी नहीं है जो इस फेल के करने वाले के साथ मुतालिक हो, लिहाजा वकील का करना भी ऐसा ही है जैसे मुवक्किल का करना, लिहाजा मुवक्किल हानिस हो जाएगा। कहते हैं सुम्मन फातुहु राजियातुन इलल आमिरी फिर इस काम का नफा जो है वो हुक्म देने वाले की तरफ लौटता है, फयुज आलू हुआ मुबाशिरन तो उसी को सरंजाम देने वाला करार दिया जाएगा, इसला हुकूक लहू यरजउ इलल मामूरी इसलिए क्योंकि इस फेल के ऐसे हुकूक नहीं है जो मामूर यानी वकील की तरफ लौट रहे हों, तो हुकूक का ताल्लुक भी वकील से नहीं और नीस फायदा भी किसको लौट रहा है, मुवक्किल को, तो वकील का फेल भी इसी आमिर के फेल की तरह हुआ तो यह हानिस हो जाएगा। भाई यहां लफ्ज आया ज़बहुन, भाई याद रखो एक लफ्ज है ज़बहुन ज़ाल के फतहा के साथ और एक ज़िबहुन ज़ाल के कसरा के साथ। ज़बहुन ज़ाल के फतहा के साथ हो तो यह मस्तर है, इसका माना है ज़बा करना, और अगर ज़िबहुन ज़ाल के कसरा के साथ हो तो यह उस जानवर को कहा जाता है जिसको ज़िबा किया जाता है, जिसकी कुर्बानी की जाती है। भाई आगे देखिए, वलौ क़ाला अनै तु अल्ला अतवल्ला ज़ालिका बिनफ्सी दुय्यिन फिल क़ज़ा। भाई सूरत मसला यह, आपको साहिब हिदायत ने बतला दिया कि अगर किसी शख्स ने गुलाम की पिटाई न करने की कसम खाई या बकरी को जिबा न करने की कसम खाई और फिर वकील के जरिए यह फेल करवाया तो भी यह शख्स हानिस हो जाएगा। लेकिन यह शख्स कहता है कि मेरी मुराद तो यह थी कि मैं खुद यह फेल नहीं करूंगा, तो जब मेरे वकील ने किया है मैंने खुद तो नहीं किया लिहाजा मैं हानिस नहीं हूं। तो कहते हैं इस सूरत में दयानतन भी इसकी तस्दीक की जाएगी और अगर मामला काजी तक चला गया तो काजी भी इसकी तस्दीक करेगा, काजी भी इसकी तस्दीक करेगा। तो कहते हैं वलौ क़ाला अनै तु अल्ला अतवल्ला ज़ालिका बिनफ्सी, और अगर उस कसम खाने वाले ने कहा अनै तु कि मेरी मुराद ये थी अल्ला अतवल्ला ज़ालिका बिनफ्सी कि मैं खुद मुतवल्ली नहीं बनूंगा इस काम का, यानी मैं खुद इस काम को सरंजाम नहीं दूंगा, तो दुय्यिना फिल क़ज़ाई, तो क़ज़ा के अंदर भी इसकी तस्दीक की जाएगी। बिखिलाफ़ मा तक़द्दम मिन अत्तलाक़ वग़ैरिही, बखिलाफ उसके जो माकबल में गुजर गया यानी तलाक वगैरह, तलाक निकाह और इताक में, अगर वो कहता है कि मेरी मुराद तो ये थी कि मैं खुद निकाह नहीं करूंगा, ये तो मेरे वकील ने करवाया है, तो वहां दयानतन तो उसकी तस्दीक की जाएगी लेकिन कजाअन नहीं की जाएगी। लेकिन यहां पर दयानतन भी तस्दीक करेंगे और कजाअन भी, अब उसकी वजह भी आगे साहिबे हिदायत जिक्र फरमाएंगे। वह वजहुल फर्की, अब भाई फर्क की वजह आ गई, फर्क की वजह वो जो साहिब हिदायत ने दो तीन सत्रें पहले वादा किया था, वसनुशीरु इलल माना फिल फर्की, कि सबब की तरफ हम इशारा करेंगे फर्क के अंदर, अब वो फर्क जिक्र करने लगे हैं तो अब ये दोनों का फर्क बयान करेंगे। निकाह और तलाक के अंदर अगर वो कहता है कि मेरा मतलब ये था कि मैं खुद ये काम नहीं करूंगा तो कज़ान उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, और गुलाम की पिटाई और बकरी के ज़िबा करने में अगर वो कहता है कि मेरी मुराद ये थी कि मैं खुद ये फेल नहीं करूंगा तो यहां इसकी कज़ान भी तस्दीक की जाएगी। तो इन दोनों में फर्क की वजह क्या है तो अब इसे बयान करेंगे साहिबे हिदाया। कहते हैं वजहुल फर्की, और फर्क की वजह यह है, तो देखो फर्क आया किन दो चीजों में, किस किस्म के अफाल में, कुछ है अफाल हिस्सिया जो आंखों से नजर आते हैं जैसे गुलाम की पिटाई करना या बकरी को जिबा करना या इस जैसा कोई और काम है, वो अफाल हिस्सिया जो आंखों से नजर आते हैं, और निकाह तलाक और एताक ये तो सिर्फ जुबान से कहने से हो जाते हैं, तो ये अफाल हिस्सिया नहीं है भाई, अफाल हिस्सिया नहीं, यानी ये आंखों से हमें नजर नहीं आते। भाई फेले हिस्सी है उसका तो हमें असर आंखों से नजर आता है, बकरी जिबा की है तो बकरी जिबा हो गई, जिबा शुदा हमें नजर आ रही है, गुलाम की पिटाई हो रही है तो हमें आंखों से नजर आ रही है भाई, तो ये अफाल हिस्सिया हैं, और वो जो निकाह तलाक वगैरह है वो अफाल हुक्मिया हैं, वो क्या हैं, अफाल हुक्मिया हैं, यानी हुक्म के एतबार से वो अफाल हैं, यानी उनकी कोई जाहिरी सूरत नहीं है। तो ये दोनों में फर्क क्यों किया गया, अफाल हिस्सिया में कजाअन भी तस्दीक की जाएगी और अफाल हुक्मिया के अंदर कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं वजहुल फर्की, और फर्क की वजह यह है कि अन्न तलाक लैस इल्ला तकल्लुमन, के तलाक नहीं है मगर तकल्लुम करना, बात करना, बि कलामिन ऐसे कलाम पर, युफ़ज़ी इला वुकूइ तलाक अलैहा, जो पहुंचा दे उस औरत पर तलाक के वाके होने तक। भाई तलाक किस चीज का नाम है, जुबान से ऐसे लफ्ज अदा करना जिससे उस औरत को तलाक हो जाए, एताक किस चीज का नाम है, जुबान से ऐसे लफ्ज कहना जिससे गुलाम आजाद हो जाए, निकाह किस चीज का नाम है, जुबान से ऐसे अल्फाज कहना जिससे निकाह मुनाकिद हो जाए। तो मालूम हुआ निकाह एताक तलाक वगैरह ये सब अल्फाज पर तकल्लुम को कहते हैं, तो इन अल्फाज को चाहे ये खुद अदा करे चाहे किसी दूसरे के जरिए कहलवा दे, दोनों का एक ही हुक्म है, निकाह एताक और तलाक वगैरह ये सिर्फ जुबान से तकल्लुम का नाम है, तो चाहे ये खुद इसको करे चाहे किसी दूसरे के जरिए करवाए, दोनों का एक ही हुक्म है। तो कहते हैं वह वजहुल फर्की, और फर्क की वजह यह है कि अन तलाक लैसा इल्ला तकल्लुमन, कि तलाक नहीं है मगर यह कि तकल्लुम किया जाए, भी कलामिन ऐसे कलाम पर, युफजी इला वुकूइ तलाक अलैहा, जो उस औरत पर तलाक वाके होने तक पहुंचा दे, वल अम्रु बिज़ालिका मिस्लु तकल्लुमि बिही, और इसका हुक्म देना भी इस पर तकल्लुम की तरह ही है, वकील को कहना भी खुद करने ही की तरह है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल अमरु बिज़ालिका मिस्लु तकल्लुमि बिही, और इस चीज का हुक्म देना भी इस पर तकल्लुम की तरह ही है, यानी गोया खुद ही करने की तरह है, यानी यूं को वकील को तलाक का कहना भी खुद तलाक देने की तरह है, वकील का निकाह करना भी खुद निकाह करने की तरह ही है भाई। तो कहते हैं वल अमरु बिज़ालिका मिस्लु तकल्लुमि बिही, और इसका हुक्म देना भी इस पर तकल्लुम करने की मिसल है, वल लफ्ज़ु यंतज़िमुहुमा, और ये लफ्ज़ दोनों को शामिल है, वल लफ्ज़ु, याद रखो इससे मुराद वो जो यमीन इसने जिक्र की थी
जी।
वो जो इसने यमीन जिक्र की थी कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, तो चाहे ये खुद निकाह करे चाहे वकील के जरिए निकाह करवाए, ये कसम दोनों को शामिल है, दोनों सूरतों में ये हानिस हो जाएगा, क्योंकि वकील के जरिए भी करवाया निकाह तो इसने निकाह कर लिया। या इसी तरह इसने कहा था वल्लाह मैं तलाक नहीं दूंगा, तो ये लफ्ज़ दोनों को शामिल है, खुद तलाक दे फिर भी कहते हैं इसने तलाक दे दी, और वकील के जरिए तलाक दे फिर भी कहते हैं इसने तलाक दे दी भाई। तो ये जो इसने कसम खाई थी उसके लफ्ज दोनों को शामिल हैं, चाहे ये खुद उस फेल को करे चाहे इसका वकील उस फेल को करे। तो कहते हैं वल लफ्ज़ु यंतज़िमुहुमा, और ये जो लफ्ज है यमीन का ये दोनों को शामिल है, यानी इसके फेल को भी और इसके वकील के फेल को भी, फ़इदा नवत तकल्लुमा बिही, तो जब इसने इस पर तकल्लुम की नीयत कर ली, फकद नवल खुसूस फिल आमी, तो इसने आम के अंदर खुसूस की नीयत कर ली। भाई देखिए इसने जो कसम जिक्र की कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, तो चाहे ये निकाह कर ले ये इसको भी शामिल है, और वकील इसका निकाह करवा दे ये इसको भी शामिल है। मालूम हुआ ये लफ्ज आम है, ये लफ्ज आम है, इसके अपने निकाह करने को भी शामिल और वकील के निकाह करने को भी शामिल है, और फिर बाद में ये कहता है वकील के जरिए निकाह करवा के कि मैं तो हानिस नहीं हुआ, मेरी तो ये नीयत थी कि मैं खुद नहीं करूंगा, और मैंने तो खुद निकाह नहीं किया भाई, मेरे तो वकील ने निकाह करवाया है लिहाजा मैं हानिस नहीं। मालूम हुआ इसके अल्फाज आम हैं जो इसके निकाह करवाने को भी शामिल है और वकील के निकाह करवाने को भी शामिल, और इस आम में से वो खास की यानी सिर्फ अपनी नीयत करता है, और आप पढ़ चुके हैं आम के अंदर खास की नीयत जायज है
जी।
आम के अंदर खास की नीयत जायज है। एक आदमी कहता है वल्लाह मैं ताम नहीं खाऊंगा, अब ताम का लफ्ज तो आम है, दुनिया के हर खाने को ताम कहते हैं, लेकिन यह कहता है भाई मेरी नीयत तो थी फला किस्म का खाना, तो कहते हैं यह आम के अंदर खास की नीयत कर रहा है, लफ्ज है आम और नीयत कर रहा है एक खास की, तो यह दयानतन इसकी तस्दीक की जाती है, कजाअन इसकी तस्दीक नहीं की जाती। यहां पर भी इसने जो अल्फाज जिक्र किए हैं वो इसके फेल को भी शामिल हैं और इसके वकील के फेल को भी शामिल हैं, तो इन दोनों में से वो अपनी नीयत करता है कि मेरा मतलब तो यह था मैं खुद नहीं करूंगा, तो इसने आम के अंदर खास की नीयत कर ली, तो दयानतन तो तस्दीक की जाएगी लेकिन कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि यह जाहिर के खिलाफ है। जाहिर तो यही है इसने आम लफ्ज जिक्र किए थे लिहाजा यह खुद निकाह करे तब भी हानिस होना चाहिए, वकील करवाए तो फिर भी हानिस होना चाहिए भाई। तो कहते हैं फ़इदा नवत तकल्लुम बिही, तो जब इसने इस पर तकल्लुम की नीयत कर ली, फ़कद नवल खुसूस फिल आमी, तो इसने आम के अंदर खुसूस की नीयत कर ली यानी आम के अंदर खास की नीयत कर ली, फ़युदय्यनु दयानतन ला कज़ाअन, तो इसकी दयानतन तस्दीक की जाएगी न कि कज़ाअन, दयानतन तस्दीक की जाएगी लेकिन कज़ाअन तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि यह जाहिर के खिलाफ है। बाकी वो अफाल हिस्सिया, वो जो गुलाम की पिटाई थी या बकरी को जिबा करना, जो आंखों से फेल नजर आते हैं, उसमें वो कहता है मेरी तो ये नीयत थी कि मैं खुद पिटाई नहीं करूंगा या मैं खुद जिबा नहीं करूंगा, लिहाजा मैं हानिस नहीं हूं, तो इसमें कजाअन भी तस्दीक की जाएगी। वजह ये कि ये अफाले हिस्सिया हैं और जाहिर आंखों से भी नजर आ रहा है कि गुलाम की पिटाई ये खुद नहीं कर रहा, इसका वकील है वो पिटाई कर रहा है, और जाहिर आंखों से भी नजर आ रहा है कि ये खुद बकरी को जिबा नहीं कर रहा बल्कि इसका वकील जिबा कर रहा है। तो यहां अफाले हिस्सिया के अंदर भी फेल की निस्बत मुअक्किल की तरफ करते हैं कि ये फेल इस मुअक्किल ने किया है, लेकिन वो मजाजन निस्बत की जाती है, हकीकत में तो उसने ये फेल नहीं किया, मजाजन की, चूंकि हुक्म देने वाला था इसलिए यूं कह देते हैं कि ये फेल इसने किया है
जी।
तो हकीकत में तो इसने ये फेल किया ही नहीं, इसके वकील ने किया है। तो इसने भी कहा कि मेरी तो ये नीयत थी कि मैं खुद नहीं करूंगा और मैंने तो खुद नहीं किया, मेरे तो वकील ने यह फेल किया है। तो लिहाजा इस सूरत में कजाअन भी तस्दीक करेंगे क्योंकि वो अपने कलाम के हकीकी माना का इरादा कर रहा है
जी।
हकीकी माना क्या था, खुद पिटाई करे या खुद जिबा करे तो फिर हानिस होता है और कोई और करे तो हानिस नहीं होता, तो ये अपने कलाम के हकीकी माना का इरादा कर रहा है, लिहाजा कजाअन भी इसकी तस्दीक की जाएगी। तो कहते हैं अम्मज़्ज़बहु वज़्ज़र्बु फ़िअलुन हिस्सियुन, बाकी ज़िबा करना और पिटाई करना फ़िअलुन हिस्सियुन, तो ये तो फ़ेले हिस्सी हैं, युअरफ़ु बि असरिही, जिनको जाना जाता है उनके असर से, फ़ेले हिस्सी को उसके असर से जाना जाता है, फ़ेले हिस्सी का असर सबको नजर आता है। भाई वो गुलाम की पिटाई कर रहा है तो सबको वो पिटाई होती हुई नजर आ रही है, वो बकरी को जिबा कर रहा है तो सबको बकरी जिबा होती हुई नजर आ रही है, तो फेले हिस्सी की पहचान उसके असर से होती है, और जब दूसरे ने ये फेल किया तो उस फेल का असर पाया गया, और ये जो फेल का असर पाया गया ये आमिर ने ये असर पैदा किया या मामूर यानी वकील ने, वकील ने यह असर पैदा किया है, तवज्जो है, तो वहां हकीकतन वो फेल करने वाला वो वकील ही है, वो पिटाई कर रहा है या वो बकरी जिबा कर रहा है, और ये जो आमिर की तरफ फेल की हम निस्बत करते हैं
जी।
भाई जब आप किसी चीज में दूसरे को वकील बनाते हैं कि ये काम कर दो, तो उस काम करने की निस्बत किसकी तरफ करते हैं, आमिर की तरफ, तो ये जो आमिर की तरफ यहां इस बकरी के जिबा करने या गुलाम की पिटाई करने की निस्बत हो रही है, ये मजाजन है, ये हकीकत में वो जर्ब वाला फेल ये नहीं कर रहा, हकीकत के अंदर उस बकरी को ये नहीं जिबा कर रहा, क्योंकि उसका असर हमें नजर आ रहा है कि वो वकील कर रहा है, तो जो आमिर की तरफ निस्बत की जाती है वो मजाजन की जाती है। तो जब इसने कहा कि जब मैंने कसम खाई थी कि वल्लाह मैं अपने गुलाम की पिटाई नहीं करूंगा या अपनी बकरी जिबा नहीं करूंगा, तो मेरे कहने का मतलब यह था मैं खुद अपने हाथ से यह फेल नहीं करूंगा, तो कहते हैं इस सूरत में इसकी कजाअन भी तस्दीक की जाएगी क्योंकि ये अपने कलाम के हकीकी माना का इरादा कर रहा है। ये भाई जब वकील ने जिबा किया है बकरी को तो हकीकतन वकील ने जिबा किया है या हकीकतन इस आमिर ने जिबा किया है, हकीकतन तो वकील ने जिबा किया है, तो ये भी अपने कलाम के हकीकी माना का इरादा कर रहा है कि मेरा मतलब यह था मैं अपने हाथ से नहीं करूंगा, तो ये तो कलाम का हकीकी माना है, और वो जो हम इसकी तरफ निस्बत करते भी थे वो तो मजाज था भाई, तो जब ये अपने कलाम की हकीकी माना का इरादा कर रहा है तो कजाअन भी तस्दीक की जाएगी। तो कहते हैं अम्मज़्ज़बहु वज़्ज़र्बु फ़िअलुन हिस्सियुन युअरफ़ु बि असरिही, इसलिए क्योंकि ज़िबा करना और पिटाई करना ये तो ऐसा फ़िअल हिस्सी है जिसको उसके असर से जाना जाता है। वन निस्बतु इलल आमिरी बि तस्बीबि मजाज़न, सबब युसब्बिबु तस्बीब का माना है सबब बनना। वन निस्बतु इलल आमिरी, और इस फेल की जो निस्बत की जाती है आमिर की तरफ, बि तस्बीबि, ये सबब बनने की वजह से है, मजाज़न बेतबार मजाज के, इस फेल की जो निस्बत आमिर की तरफ की जाती है वो मजाजन सबब बनने की वजह से है भाई, यानी मजाजन आमिर की तरफ निस्बत की जाती है। तो कहते हैं वन निस्बतु इलल आमिर बि तस्बीबी मजाजन, और इस फेल की निस्बत जो आमिर की तरफ की जाती है वो सबब बनने की वजह से है, मजाजन यानी मजाजी तौर पर, فَإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوَى الْحَقِيقَةَ, تو جب اس نے فعل کو خود کرنے کی نیت کی, فَقَدْ نَوَى الْحَقِيقَةَ, تو تحقیق اس نے حقیقت کی نیت کی, اپنے کلام کی حقیقت کی یعنی حقیقی معنی کی نیت کی ہے. فَيُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً, تو دیانتن بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضاءً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی. آگے دیکھیے, وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ إِنسَانًا فَضَرَبَهُ لَمْ يَحْنَسْ فِي يَمِينِهِ. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنے بیٹے کی پٹائی نہیں کروں گا, پھر اس نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ میرے بیٹے کی پٹائی کرو, اس دوسرے شخص نے اس کے بیٹے کی پٹائی کر دی, تو کیا یہ حانث ہوگا یا حانث نہیں؟ کہتے ہیں نہیں, یہ حانث نہیں ہوگا. تو اس پر اشکال ہوتا ہے, بھائی ابھی آپ نے ہمیں اوپر غلام کا مسئلہ بتلایا تھا کہ غلام کے اندر وہ قسم کھاتا ہے میں غلام کی پٹائی نہیں کروں گا, اور پھر کسی وکیل کے ذریعے غلام کی پٹائی کرواتا ہے تو یہ حانث ہو جاتا ہے. اور بیٹے کا مسئلہ بھی بیعین ہی اسی کی طرح ہے, یہاں بیٹے کے مسئلے کے اندر بھی بیٹے کی پٹائی وکیل اس کے کہنے پر کر رہا ہے اور یہ فعل حسی ہے, لہذا اس کے اندر اس کہنے والے کو حانث ہونا چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں یہ حانث نہیں ہوگا. تو وجہ آپ کو بتلائیں گے صاحب ہدایہ کہ بھئی دیکھو وہ جو غلام کی پٹائی تھی وہ اور چیز تھی, یہ بیٹے کی پٹائی اور چیز ہے. غلام کی پٹائی کا فائدہ مؤکل کو ہو رہا تھا کہ غلام کی پٹائی ہوگی تو غلام اس مؤکل کے حکم کی زیادہ تعمیل کرے گا, اس کا حکم زیادہ مانے گا, جبکہ بیٹے کی پٹائی کا فائدہ بیٹے کو ہی ہے, اس کی اصلاح ہوگی, اس کی اصلاح ہوگی, وہ ادب سیکھے گا. تو لہذا دونوں میں فرق ہے, غلام کی پٹائی سے عامر کا فائدہ تھا اور بیٹے کی پٹائی سے بیٹے کا فائدہ ہے. تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ, اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی اولاد کی پٹائی نہیں کرے گا, فَأَمَرَ إِنسَانًا فَضَرَبَهُ, تو اس نے ایک انسان کو حکم دیا, اس نے اس بیٹے کی پٹائی کی, لَمْ يَحْنَسْ فِي يَمِينِهِ, تو یہ شخص اپنی قسم کے اندر حانث نہیں ہوگا, لِأَنَّ مَنْ فَاعْتَذَرَ بِالْوَلَدِ عَائِدَةٌ إِلَيْهِ, اس لیے کیونکہ بیٹے کی پٹائی کا جو نفع ہے عَائِدَةٌ إِلَيْهِ, وہ اسی بیٹے کی طرف لوٹ رہا ہے, یعنی اصل نفع بیٹے کو ہی ہے, کچھ نفع تو باپ کو بھی ہوگا, اس کا بیٹا ٹھیک راستے پر آ جائے گا, لیکن اصل فائدہ کس کا ہے؟ بیٹے کا فائدہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی, وہ ادب سیکھ لے گا, وہ راہ راست پر آ جائے گا. بھائی تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَنْ فَاعْتَذَرَ بِالْوَلَدِ عَائِدَةٌ إِلَيْهِ, اس لیے کیونکہ بیٹے کی پٹائی کا جو نفع ہے وہ بیٹے کی طرف ہی لوٹتا ہے. وَهُوَ التَّأَدُّبُ وَالتَّسَقُّفُ, تَأَدُّب کا معنی ہے ادب سیکھنا, تَسَقُّف سا کے ساتھ ہے, تَسَقُّف کا معنی ہے اصلاح ہونا. کہتے ہیں وَهُوَ التَّأَدُّبُ وَالتَّسَقُّفُ, اور وہ ادب سیکھنا ہے اور اصلاح ہونا ہے, یہ بیٹے کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اس کو وہ ادب سیکھ رہا ہے اور اس کی اصلاح ہو رہی ہے. فلم یونسب فعلہ الى الامر, لہذا اس وکیل کے فعل کی نسبت نہیں کی جائے گی عامر کی طرف, بخلاف الامر بضرب العبد, بخلاف غلام کی پٹائی کا حکم دینے کے, لان منفعۃ الاعتمار بامرہ, اعتمار کہتے ہیں تعمیل کرنا, لان منفعتہ, اس لیے کیونکہ غلام کی پٹائی کا جو نفع ہے, الاعتمار بامرہ, وہ عامر کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. غلام کی پٹائی کا نفع وہ جو عامر ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. فیضاف الفعل الیہ, تو لہذا اس فعل کی نسبت عامر کی طرف کی جائے گی کہ فائدہ اس کو مل رہا ہے. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے, کہتے ہیں لان منفعتہ الاعتمار بامرہ, اس لیے کیونکہ غلام کی پٹائی جو ہے اس کا نفع, الاعتمار بامرہ, وہ عامر کے حکم کی تعمیل ہے. فیضاف الفعل الیہ, لہذا عامر کی طرف اس فعل کی نسبت کی جائے گی. ومن قال لغيره ان بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق فلبس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالس فباعه ولم يعلم لم يحنس. بھائی یاد رکھو, اس مسئلے کے لیے ایک دو باتیں سمجھ لیں. بھائی یاد رکھو, یہاں لام اختصاص سے متعلق ہے یہ مسئلہ, لام اختصاص. اس نے قسم کھانے والے نے کیا کہا ہے, ان بعتو لکا ہادا صوبہ, تو لکا دیکھو یہ لام آیا ہے اور اس کو لام اختصاص کہتے ہیں. یہ اختصاص کا فائدہ دیتا ہے کہ ایک چیز خاص ہے دوسری چیز کے ساتھ. जैसे अरबी में कहते हैं अल जुल्लु लिल फरसी, झोल एक कपड़ा होता है जो घोड़े की पुश्त पर डाला जाता है, जीन के नीचे रखा जाता है। तो अल जुल्लु लिल फरसी, झोल जो है वो खास है घोड़े के साथ। तो ये लाम किस लिए आता है? इख्तिसास के लिए। तो देखो इसने बतला दिया कि झोल का इख्तिसास है घोड़े के साथ। तो यहां पर भी ये लाम इख्तिसास से मुतालिक मसाइल जिक्र होंगे। भाई एक है फेल और एक है आयन। फेल के अंदर भी इख्तिसास हो सकता है और आयन यानी कोई चीज है उसके अंदर भी इख्तिसास हो सकता है। आयन मसलन किताब है, ये किताब आपकी मिल्कियत है तो हम कहेंगे ये किताब आपकी है, यानी आपके साथ इसका इख्तिसास है। यानी यूं कहेंगे हादल किताबू लका, हादल किताबू लका, इस किताब का आपके साथ इख्तिसास है, यानी आप इसके मालिक हैं। तो ऐन यानी कोई चीज हो उसके अंदर इख्तिसास किस तरह होगा कि वो उसकी ममलूक हो। ऐन का इख्तिसास किसी इंसान के साथ कैसे होगा कि वो उसकी ममलूक हो। और एक है फेल का इख्तिसास, याद रखो फेल का इख्तिसास किसी के साथ इस तरह होगा कि वो फेल उसके कहने पर किया जाए। मसलन एक आदमी कपड़े बेच रहा है, अगर वो आपके कहने पर कपड़े बेचेगा तो हम कहेंगे ये वो आपके लिए फेल कर रहा है, यानी आप मुअक्किल हैं और वो वकील है। तो ये जो वकील फेल करता है इस फेल का इख्तिसास होता है मुअक्किल के साथ कि मुअक्किल के लिए वो फेल कर रहा है। तो ऐन का इख्तिसास कैसे होता है कि वो ममलूक हो उस किसी इंसान की, और फेल का इख्तिसास कैसे होता है कि वो उसके कहने पर फेल किया जाए। मसलन जैद के कहने पर अमर ने कोई फेल किया तो यह हम कहेंगे अमर इस काम में जैद का वकील था, अमर ने यह काम जैद के लिए किया है, यानी इस फेल का इख्तिसास है जैद के साथ। किया तो अमर ने लेकिन इख्तिसास किसके साथ है? जैद के साथ है कि जैद का वकील बनकर इसने यह फेल किया है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब याद रखना, आपको बतलाएंगे कि जब जुमले के अंदर कसम और यमीन के अंदर कोई शख्स लाम इख्तिसास को लाए और वो लाम जमीर पर दाखिल हो रहा है, लका ये लाम काफ जमीर पर दाखिल हो रहा है, तो जब भी कसम खाने वाला अपनी यमीन के अंदर फेले मुतादी को जिक्र करे लाम इख्तिसास के साथ और वो लाम इख्तिसास दाखिल हो रहा है जमीर पर, तो आगे मफूल भी आएगा। क्या आएगा? मफूल। तो वो इस लाम को फेल और मफूल के दरमियान जिक्र करेगा या इस लाम को मफूल के बाद जिक्र करेगा? यूं कहो आसान लफ्जों में कि वो इस लाम को मफूल पर मुकदम करेगा यानी फेल के साथ जिक्र करेगा, या इस लाम को मफूल के बाद जिक्र करेगा यानी मफूल के साथ मिलाएगा। तो जब भी फेले मुतअद्दी यमीन में जिक्र किया जाए और उसके साथ लाम इख्तिसास को जिक्र किया जाए और वो लाम इख्तिसास जमीर पर दाखिल हो रहा है, तो फिर वो लाम इख्तिसास या तो मफूल पर मुकद्दम होगा यानी फेल के साथ होगा या मफूल पर मुअख्खर होगा। जब जुमले के अंदर कसम और यमीन के अंदर कोई शख्स लाम इख्तिसास को लाए और वो लाम इख्तिसास या तो मफूल से पहले होगा या मफूल के बाद होगा, और मफूल वो ऐन है, कोई चीज है। मफूल क्या है? कोई चीज है, मसलन जिस पर वो फेल वाके हो रहा है, तो वो लाम इख्तिसास उस मफूल से पहले होगा यानी फेल के साथ होगा। जी। सबसे पहले फेल आया, फिर लाम आया, फिर मफूल आया, तो ये लाम मफूल पर मुकद्दम है यानी फेल के साथ मिला हुआ है, और कभी कभार ये लाम जो है मफूल के बाद होगा। तो जब भी फेले मुतअद्दी यमीन में जिक्र किया जाए और उसके साथ लाम इख्तिसास को जिक्र किया जाए और वो लाम इख्तिसास जमीर पर दाखिल हो रहा है, तो फिर वो लाम इख्तिसास या तो मफूल पर मुकद्दम होगा यानी फेल के साथ होगा या मफूल पर मुअख्खर होगा। फिर इसके अंदर ये देखा जाएगा कि ये ऐसा फेल है जिसमें नियाबत जारी होती है या जारी नहीं होती। अगर ऐसा फेल है जिसमें नियाबत जारी होती है तो फिर तो अगर उस लाम को फेल के साथ जिक्र किया तो और हुक्म है, लाम को अगर मफूल के बाद जिक्र किया फिर और हुक्म है। और अगर ऐसा फेल है जिसमें नियाबत जारी नहीं होती तो फिर चाहे लाम को उस मफूल पर मुकद्दम करे चाहे मुअख्खर करे फिर एक ही हुक्म रहेगा। तो लिहाजा सबसे पहले आपने यह देखना है कि लाम इख्तिसास मफूल पर मुकद्दम है या मफूल से मुअख्खर है। फिर उसके बाद आपने यह देखना है यह फेल ऐसा है कि जिसमें नियाबत जारी होती है या इसमें नियाबत जारी नहीं होती। अगर फेल ऐसा है कि इसमें नियाबत जारी होती है, यानी इसमें कोई शख्स दूसरे का नाइब बन सकता है, उसका वकील बन सकता है, और फिर उसके बाद वो लाम जो है वो मफूल पर मुकद्दम है, वो लाम मफूल पर मुकद्दम है फेल के साथ है, तो इसका मतलब है ये फेल खास होना चाहिए जिस पर ये लाम दाखिल हो रहा है। जैसे ये मिसाल मतन की मिसाल पे नजर रखें, इन बिअतु लका हादा सौबा, अगर मैंने ये कपड़ा आपके लिए बेचा, फमरअतुहु तालिकुन, तो उसकी बीवी को तलाक है। ये एक आदमी कसम खा रहा है, इन बिअतु लका हादा सौबा, ये हादा सौबा यह है मफूल भी ही भाई, और लका ये लाम इस पर मुकद्दम है, और ये बिअतु बिअ के साथ लाम जिक्र है, और बिअ का फेल आपने पढ़ा है उसमें नियाबत जारी होती है, आप उसमें दूसरे को अपना वकील बना सकते हैं। तो जब भी लाम इख्तिसास ऐसे फेल के बाद आए जिसमें नियाबत जारी होती है और यह लाम इख्तिसास मफूल पर मुकद्दम है, तो फिर ये बतला रहा है कि यह फेल इस आदमी के साथ खास होना चाहिए जिस पर लाम दाखिल हो रहा है। बेअतुल्ला का लाम किस पर दाखिल हो रहा है? जमीर पर। किस पर दाखिल हो रहा है? जमीर पर, यानी मुखातब जिसके साथ वो आदमी बात कर रहा है। तो जिस पर ये लाम दाखिल हो रहा है ये फेल को उसके साथ खास कर देगा। लाम किसके बाद आया? फेल के बाद, और इस फेल में नियाबत भी जारी होती है, इसमें कोई शख्स दूसरे का वकील बन सकता है। तो इस सूरत में ये शख्स तब हानिस होगा जब दूसरे के लिए वकील बनकर ये फेल करेगा। इन बेअतु लका हादा सौबा, ये लका किसके साथ है? बेअतु, इन बेअतु के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बेअ जो है ये इस मुखातब के लिए जब करेगा, यानी इसका वकील बनकर, तो फिर इस सूरत में ये हानिस हो जाएगा। दूसरा शख्स वो जो महलूफुन अलैह है भाई, जिससे बात कर रहा है, जिसके ऊपर कसम खा रहा है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़ा बेचा तो मेरी बीवी को तलाक है। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा जब ऐसा फेल जिक्र हो जिसमें नियाबत जारी होती है और लाम इख्तिसास मफूल पर मुकद्दम हो जाए, तो यह तकाजा करता है कि इस फेल को इस महलूफुन अलैह के साथ खास होना चाहिए। यह महलूफुन अलैह जिससे बात कर रहा है, जिसकी वजह से कसम खा रहा है, तो यह महलूफुन अलैह इसके साथ फेल खास होगा, फिर यह हानिस होगा, वैसे हानिस नहीं। इन बेअतुल्ला का माना यह है, अगर मैं तुम्हारे लिए बेचूं, यानी तुम्हारा वकील बनकर मैं इस कपड़े को बेचूं, क्योंकि फेल कैसे खास होता है किसी दूसरे के साथ कि उसका वकील बनकर वो फेल किया जाए, तो लिहाजा ये वकील बनकर उसका कपड़ा बेचेगा तो हानिस हो जाएगा। लेकिन अगर उस महलूफुन अलैह ने जिससे वो बात कर रहा है, जिससे उसने कसम में जिक्र किया है कि अगर तुम्हारे लिए मैंने ये कपड़ा बेचा, अगर उस महलूफुन अलैह ने अपना कपड़ा इस हालिफ के कपड़ों में छुपा दिया, मिला दिया, अब हालिफ बेचारे को नहीं पता कि मेरे कपड़ों में उसका कपड़ा भी मौजूद है, और फिर इस हालिफ ने यह कपड़ा भी बेच दिया, और इसने तो क्या कहा था, इन बेअतुलका हादा सौबा, अगर मैंने तुम्हारे लिए यह कपड़ा बेचा, तो कहते हैं सूरत में ये हानिस नहीं होगा, क्योंकि ये जो कपड़ा बेच रहा है इसको इलम ही नहीं है कि ये उस फुलां का कपड़ा है, और इसने तो क्या कहा था, इसने तो लाम को किसके साथ जिक्र किया था? बैअ के साथ जिक्र किया था, और ये क्या तकाजा करता है कि ये बैअ के अंदर उसका वकील बनकर बैअ करे, और ये वकील बनकर तो बैअ नहीं कर रहा, क्योंकि इसको तो उस कपड़े का पता ही नहीं है, ये लाइल्मी में उसको बेच रहा है, तो ये हानिस नहीं होगा। लेकिन अगर यही लका को ये कपड़े के बाद ले जाए, मसन यू कहता है, इन बिअतु सौबन लका, आप देखो सौबन मफूल बिही के बाद वो लका को लेकर आया है, तो ये तकाजा करता है कि ये जो सौब, ये जो मफूल बिही है, यानी ये जो ऐन है, ये जो चीज है, ये उस महलूफुन अलैह के साथ खास होनी चाहिए। इन बिअतु सौबन लका, ये सौब के बाद लाम आ रहा है, ये क्या तकाजा कर रहा है, इस कपड़े का इख्तिसास होना चाहिए उस महलूफुन अलैह के। महलूफुन अलैह वो आदमी जिसके जिस पर वो कसम खा रहा है, जिससे बात कर रहा है, तो ये कपड़ा खास होना चाहिए महलूफुन अलैह के साथ, और महलूफुन अलैह के साथ कोई ऐन कैसे खास होगी जब वो उसकी ममलूक हो। तो जब इसने ये कहा इन बिअतु सौबन लका, अगर मैंने तुम्हारा कपड़ा बेचा तो अब इसका ममलूक कपड़ा जब ये बेचेगा तो ये खानिस हो जाएगा। अब चाहे इसको इलम हो या इलम ना हो, भाई चाहे इसको इलम हो या इलम ना हो, तो हासिल कलाम ये कि लाम इख्तिसास आएगा जुमले में और उस लाम इख्तिसास के साथ महलूफुन अलैह की जमीर जुड़ी हुई होगी जिसके साथ वो बात कर रहा है, जिसकी वजह से वो कसम खा रहा है। लाम इख्तिसास आएगा जुमले में और उसके साथ ये महलूफुन अलैह की जमीर जुड़ी हुई होगी और फिर वो लाम इख्तिसास या तो फेल के बाद आएगा या मफूल बिही के बाद आएगा। अगर फेल के बाद आए तो फिर इस फेल का इख्तिसास होना चाहिए महलूफुन अलैह के साथ। और फेल का इख्तिसास महलूफुन अलैह के साथ कैसे हो सकता है कि उसका वकील बनकर ये फेल करे
जी।
और अगर ये लाम जो है मफूल के बाद आए तो फिर उस मफूल यानी उस ऐन का इख्तिसास होना चाहिए महलूफुन अलैह के साथ। और ऐन का इख्तिसास महलूफुन अलैह के साथ कैसे हो सकता है कि वो उसकी ममलूक हो, वो ऐन वो चीज उसकी ममलूक हो। तो लिहाजा अगर ये फेल ऐसा है जिसमें नियाबत जारी होती है तो इसके अंदर अगर लाम फेल के साथ जिक्र है तो इस फेल का इख्तिसास हो महलूफुन अलैह के साथ तो फिर यह हानिस होगा। और अगर यह लाम वो मफूल बिही के बाद है तो उस मफूल बिही का इख्तिसास महलूफुन अलैह के साथ हो तो फिर यह हानिस होगा। और अगर ये फेल ऐसा है कि इसमें नियाबत जारी नहीं होती, ये फेल ऐसा है कि इसमें नियाबत जारी नहीं होती तो फिर चाहे लाम मुकद्दम हो या मुअख्खर हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसका ताल्लुक मफ़ऊल से ही होगा यानी वो जो ऐन है वो महलूफुन अलैह की ममलूक होगी तो हानिस होगा वरना हानिस नहीं। मसलन देखो एक शख्स कहता है इन अकलतु लका तआमन, इन अकलतु लका तआमन। अब देखो खाने का फेल जिक्र किया और खाने के फेल में नियाबत जारी नहीं होती, कोई शख्स आपका नाइब बनकर खाना नहीं खा सकता, उससे उसी का पेट भरेगा आपका पेट नहीं भर सकता, तो मालूम है खाने पीने में नियाबत जारी नहीं होती। अब इसने कहा है इन अकल तू लका तआमन, तो अब चाहे लका को तआम पर मुकदम करे चाहे मुअखर करे दोनों में सूरतों में एक ही हुक्म है क्या कि ये ऐन जो है ये जो मफ़ऊल भी ही है इसका इख्तिसास महलूफुन अलैह के साथ नहीं होना चाहिए
जी।
इस ऐन का इख्तिसास यानी ये इस खाना इसका ममलूक ना हो तो फिर ये हानिस नहीं होगा और अगर ये खाना महलूफुन अलैह का ममलूक हुआ तो हानिस हो जाएगा। इन अकल तो लका तआमन माना यह है अगर मैंने तुम्हारा ममलूक खाना खाया तो मैं हानिस हो जाऊंगा। तवज्जो है अगर फेल ऐसा हो जिसमें नियाबत जारी नहीं होती फिर तो लाम चाहे फेल के बाद आए चाहे मफूल भी ही के बाद आए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस फेल में नियाबत जारी ही नहीं होती
जी।
अगर आप लाम को फेल से जोड़ते हैं
जी।
तो माना क्या होगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए खाऊं यानी तुम्हारा वकील बनकर खाऊं और वकील बनकर तो कोई खाना नहीं खा सकता किसी का
जी।
तो इस सूरत में फिर उस ऐन का इख्तिसास जो है वो महलूफुन अलैह के साथ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये हानिस हो जाएगा
जी।
बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी को साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे तो कहते हैं वमन काल अली गैरी ही और जिस शख्स ने किसी दूसरे से कहा इन भी अतुलका हादा सौबा कि अगर मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़ा बेच दिया फमरा अतुहू तालिकुन तो उसकी बीवी को तलाक है फलब बसल महलूफ आलह ही सौ बहु फीसिया बिल हालिफी तो महलूफुन आलह ने छुपा दिया अपने कपड़े को कसम खाने वाले के कपड़ों में फबा अहू तो फिर उस कसम खाने वाले ने वो कपड़ा बेच दिया वलम या अलम और हाल यह है कि उसको इलम नहीं है कि यह महलूफुन आलह का कपड़ा है लम यहनस तो यह हानिस नहीं होगा। भाई क्यों हानिस क्यों नहीं होगा, वजह मैंने बतलाई थी कि लाम किसके बाद आया है बैअ के बाद तो ये तकाजा कर रहा है ये बैअ का इख्तिसास होना चाहिए महलूफुन अलैह के साथ और महलूफुन अलैह के साथ बैअ का इख्तिसास कैसे होगा कि ये उसका वकील बनकर बैअ करे
जी।
ये उसका वकील बनकर बैअ करेगा तो हम कहेंगे ये महलूफुन अलैह का फेल कर रहा है
जी।
तो कहते हैं लिअन्न हर्फ लाम दखल अलल बैअ इसलिए क्योंकि हर्फ लाम दाखिल हुआ है बैअ पर हर्फ लाम बैअ पर दाखिल हुआ है यानी हर्फ लाम का ताल्लुक बैअ से है फयक्तज़ी इख्तिसासहु बिही तो यह तकाजा करता है कि इस बैअ का इख्तिसास होना चाहिए महलूफुन अलैह के साथ यानी उसके कहने पर यह फेल करे वज़ालिका भी अन यफ़अलहु बिअम्रिही और वो इस तौर पर होगा कि उसके कहने पर यह बैअ करे। بات سمجھ میں آگے پھر ترجمہ دیکھ لیں فَيَقْتَضِ اخْتِصَاصَهُ بِهِ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس بیع کا اختصاص ہونا چاہیے محلوف علیہ کے ساتھ وَذَلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأَمْرِهِ اور وہ اس طور پر ہوگا کہ یہ قسم کھانے والا یہ بیع کا فعل سر انجام دے بِأَمْرِهِ اس محلوف علیہ کے حکم سے یعنی اس کا وکیل بن کر اِذِ الْبَيْعُ يَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ اس لیے کیونکہ بیع کے اندر تو نیابت جاری ہوتی ہے ایک شخص دوسرے کا نائب ہو سکتا ہے وَلَمْ یوجد اور حال یہ ہے کہ نیابت یہاں نہیں پائی گئی نیابت یہاں نہیں پائی گئی کیونکہ اس کو علم ہی نہیں تھا کپڑا بیچتے ہوئے کہ یہ اس دوسرے شخص کا کپڑا ہے بھائی بخلاف ما اذا قال بخلاف اس کے کہ جب اس نے کہا ان بعت صوبا لکا اگر میں نے تمہارا کپڑا بیچا یہاں اب صوب کے بعد لکا آیا تو یہ صوب جو ہے محلوف علیہ کا مملوک ہو اور یہ اس کو بیچے پھر حانث ہوگا ویسے حانث نہیں تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا قال بخلاف اس کے کہ جب اس نے کہا ان بعت صوبا لکا کہ اگر میں نے تمہارا کپڑا بیچا حیث یحنس اذا باع صوبا مملوکا لہ کیونکہ یہ شخص حانث ہو جائے گا اذا باع صوبا مملوکا لہ جب یہ اس کے مملوک کپڑے کو بیچے گا اس محلوف علیہ کے مملوک کپڑے کو یہ حالف بیچے گا تو حانث ہو جائے گا سما ان کان بی امرہی اور بغیر امرہی چاہے اس کے حکم سے ہو اور بغیر امرہی یا اس کے حکم کے بغیر ہو علم بذلک او لم یعلم چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو جس صورت میں بھی یہ محلوف علیہ کے مملوک کپڑے کو بیچے گا یہ حانث ہو جائے گا جب اس نے لام کو کپڑے کے بعد ذکر کیا بات سمجھ میں آ گئی جو پیچھے عبارت تھی ان بعتو صوبا لکا اے ان بعتو صوبا ثابتا لکا ایسا کپڑا جو آپ کے لیے ثابت ہے جس کا آپ کے ساتھ اختصاص ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ حانث ہو جائے گا چاہے اس کے حکم سے بیچے یا اس کے حکم کے بغیر چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو لأن حرف اللام دخل على العين اس لیے کیونکہ یہ حرف لام جو ہے عین پر یعنی اس کپڑے پر داخل ہوا ہے لأنه اقرب الیہ اس لیے کیونکہ یہ کپڑا جو ہے اس لام کے زیادہ قریب ہے فَيَقْتَزِ اخْتِصَاصَ الْعَيْنِ بِهِ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس عین کا اختصاص ہونا چاہیے محلوف علیہ کے ساتھ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ اور وہ اس طور پر ہوگا کہ وہ کپڑا اس کا مملوک ہو وہ عین اس کا مملوک ہو وَنَظِيرُهُ الصِّيَاغَةُ وَالْخِيَاطَةُ اور اس بیع کی نظیر جو ہے صیاغت اور خیاطت ہے صیاغت بھائی سواد کے ساتھ ہے صیاغت کہتے ہیں زرگروں کا جو کام ہے زرگروں والا جو کام ہے یعنی سناروں والا جو کام ہے اس کو صیاغت کہتے ہیں اور خیاطت جو ہے سلائی کو کہتے ہیں جو درزیوں والا عفیل ہے بھائی تو کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ الصِّيَاغَةُ وَالْخِيَاطَةُ اور بیع کی نظیر جو ہے وہ زرگری اور سلائی ہے یعنی یہ بھی بیع کی طرح ہیں ان میں بھی نیابت جاری ہوتی ہے تو ان میں بھی لام اختصاص کو اگر فعل کے بعد ذکر کرے گا تو اس فعل کا اختصاص چاہیے اور اگر مفعول کے بعد لام کو ذکر کرے گا تو اس مفعول کا اختصاص چاہیے ہوگا تو کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ الصِّيَاغَةُ وَالْخِيَاطَةُ تو اس بیع کی نظیر جو ہے زرگری اور سلائی ہے وَكُلُّ مَا يَجْرِي فِيهِ نِيَابَةُ اور اسی طرح ہر وہ فعل ہے جس کے اندر نائب ہونا جاری ہوتا ہے بخلاف الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَضَرْبِ الْغُلَامِ بخلاف کھانے اور پینے اور لڑکے کی پٹائی کے غلام سے مراد ہے لڑکا بھائی یہاں غلام غلام کے معنی میں نہیں تو یہاں غلام سے مراد لڑکا ہے بھائی کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں غلام کی پٹائی میں نیابت جاری ہوتی ہے بھائی تو کہتے ہیں بخلاف الاکل والشرب وضرب الغلام اور بخلاف کھانے اور پینے اور لڑکے کی پٹائی کے لانه لا يحتمل النیابه کیونکہ یہ نائب ہونے کا احتمال نہیں رکھتے فلا يفترق الحكم فيه في الوجهين لہذا حکم مختلف نہیں ہوگا اس میں دونوں صورتوں میں یعنی چاہے لام کو مفعول پر مقدم کرے چاہے لام کو مفعول سے مؤخر کرے دونوں صورتوں میں حکم مختلف نہیں ہوگا کی وجہ یہ کہ ان میں فعل اختصاص کا احتمال ہی نہیں رکھتا اس میں نیابت جاری ہوتی ہی نہیں تو صرف عین کے اندر ہی اختصاص ہو سکتا ہے بھائی وَمَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ حُرٌّ إِنْ بِعْتُهُ فَبَاعَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ عَتَقَ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی تعلیق کی کہ یہ والا غلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو بیچا اور پھر اس نے اس غلام کو بیچا تو یاد رکھو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا एक आदमी ने कहा था कि मेरा यह गुलाम आजाद है, अगर मैंने इसको बेचा फिर इसने यह गुलाम बेच दिया तो गुलाम आजाद नहीं होगा। क्यों नहीं आजाद होगा, वजह आप बताइए। हां शाबाश, क्योंकि गुलाम उसकी मिल्कियत से निकल गया है, तो जब मिल्कियत से निकल गया तो अब ये उसको आजाद करने का मालिक ही ना रहा भाई। जबकि दूसरी सूरत ये है कि ये खियारे शर्त को साथ जिक्र करता है। आपने पढ़ा है कि बाज औकात बाय या मुश्तरी में से एक अपने लिए खियारे शर्त रख लेता है। मसलन एक आदमी आपके पास आया और आपको बहुत मजबूर कर रहा है कि अपनी ये गाड़ी मुझे बेच दीजिए, तो आप कहते हैं कि भाई मुझे अंदाजा नहीं है कि इस बेय में मेरा फायदा है या नहीं, मैं आपको बेच देता हूं लेकिन 3 दिन तक मुझे इख्तियार है, मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा, तो 3 दिन तक मैं अगर इस बेय को फसख करना चाहूं तो फसख कर सकता हूं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं राजी हूं। तो ये गाड़ी जो आपने बेची ये खियारे शर्त के साथ है और आपको 3 दिन तक इसको फसख करने का इख्तियार है। तो ये खियारे शर्त 3 दिन तक हो सकता है और यह मुश्तरी भी अपने लिए रख सकता है और बाय भी अपने लिए खियारे शर्त रख सकता है। आप याद रखो, ज़ाबता याद रखना, अगर बाय खियारे शर्त अपने लिए रखे
जी,
तो बिल इत्तेफाक मबीआ उसकी मिल्कियत से नहीं निकलता
जी।
आपने अपनी गाड़ी बेची है तो बिल इत्तेफाक ये जब तक आपको इख्तियार है यह गाड़ी आपकी मिल्कियत से अभी नहीं निकली। हालांकि बाय करते ही मबिया बाय की मिल्क से निकल जाता है और मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो जाता है। जैसे मैं मिसाल जिक्र करता हूं उमूमन कि आपकी जेब पर एक कलम लगा हुआ है, मैंने आपसे कहा यह कलम मैंने आपसे 100 रुपए में खरीद लिया, आपने कहा मुझे मंजूर है, जैसे ही ईजाब और कबूल हुआ साथ ही मैं इस कलम का मालिक बन गया। कलम बेशक आपकी जेब पर लगा है लेकिन मैं मालिक बन चुका हूं। लेकिन यह तो वो बेय है जो पूरी कर दी जाए, जबकि खियार शर्त में तो बेय अभी ताम और लाजिम नहीं हुई। तो खियार शर्त अगर बाय अपने लिए रखे तो बिल इत्तेफाक मबीहा अभी भी उसकी मिल्कियत से नहीं निकला। खियार शर्त अगर कौन रखे, बाय, तो मबीहा बिल इत्तेफाक बाय की मिल्कियत से नहीं निकला। लिहाजा एक आदमी ने कहा कि अगर मैंने अपना यह गुलाम बेचा तो यह आजाद है और फिर इसने खियार शर्त के साथ इस गुलाम को बेचा, इसने खियारे शर्त के साथ इस गुलाम को बेचा, तो याद रखो गुलाम आजाद हो जाएगा। गुलाम आजाद हो जाएगा क्योंकि बेय पाई गई और खियारे शर्त की वजह से गुलाम के अंदर अभी भी इसी बाय की मिल्कियत है, लिहाजा गुलाम आजाद हो जाएगा। अगर बेय कामिल हो जाती, ताम हो जाती, फिर तो इसकी मिल्कियत ही ना रहती, फिर तो गुलाम आजाद ना होता। लेकिन खियारे शर्त के साथ जब बेचा है तो बाय की अभी भी मिल्कियत है, लिहाजा बेचते ही फौरन गुलाम आजाद हो गया। बात समझ में आ गई। जाब्ता क्या है कि बाय अगर खियारे शर्त के साथ कोई चीज बेचे तो मबीहा उसकी मिल्कियत से नहीं निकलता। तो कहते हैं वमन काल हाद अल अब्द हुर्रुन इन बियतुहू, और अगर किसी शख्स ने कहा मेरा यह गुलाम आजाद है अगर मैंने इसको बेचा, फबाहू अला अन्नहू बिल खियारी, तो उसने इस गुलाम को बेच दिया इस शर्त पर कि उसको इख्तियार है, आताका, तो यह गुलाम आजाद हो जाएगा। लि वजूद इस शर्त, शर्त पाए जाने की वजह से, वह हुवल बै, और वो बै है, बै पाई गई, वल मिल्क फीह कायमुन, और हाल यह है कि इस गुलाम के अंदर बेचने वाले की मिल्कियत अभी भी कायम है, मौजूद है, फयंजिलुल जजा, तो जजा नाजिल हो जाएगी। जजा क्या थी, अगर मैं बेचूं तो ये आजाद है, तो आजादी आ जाएगी और यह गुलाम आजाद हो जाएगा। तो ये माना है फयंसिलुल जजाउ, तो जजा यानी हुर्रियत नाजिल हो जाएगी। वकदालिक लौ काल अल मुश्तरी इनिश्तरैतुहु फहुवा हुर्रुन। अब दूसरी सूरत भाई, खियारे शर्त मुश्तरी ने रखा है, मुश्तरी ने कहा अगर मैं इस गुलाम को खरीदूं तो यह आजाद है, अगर मैं इस गुलाम को खरीदूं तो यह आजाद है। अब मुश्तरी ने खियारे शर्त के साथ गुलाम को खरीद लिया कि मुझे इख्तियार है, मैं 3 दिन तक बैग को फसख करना चाहूं तो फसख कर सकता हूं। खियारे शर्त किसने रखा है, मुश्तरी ने, और इसने क्या कहा था, अगर मैं इस गुलाम को खरीदूं तो यह आजाद है। तो याद रखो इस सूरत में भी गुलाम आजाद हो जाएगा। और इसमें जाब्ता याद रखना, बाय के बारे में तो मैंने बता दिया, अगर खियारे शर्त बाय अपने लिए रखेगा तो मबिया बाय की मिल्कियत से नहीं निकला, लेकिन अगर खियारे शर्त मुश्तरी रखे तो फिर साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। साहिबैन फरमाते हैं अगर मुश्तरी खियारे शर्त अपने लिए रखेगा तो मबिया मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो जाएगा। बाय ने खियार रखा था तो बाय की मिल्क से नहीं निकला, लेकिन मुश्तरी ने ख्याल रखा है तो मबिया बाय की मिल्क से निकल गया और मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो गया। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, जब मुश्तरी खियार रखता है मबिया बाय की मिल्क से तो निकल जाता है लेकिन मुश्तरी की मिल्क में अभी भी दाखिल नहीं होगा।
जी।
तो अगर मुश्तरी खियार शर्त रखे तो साहिबैन के नजदीक मबिया उसकी मिल्क में दाखिल हो चुका है, जबकि इमाम साहब के नजदीक मबिया अभी उसकी मिल्कियत में दाखिल नहीं। लिहाजा अब सूरत यह है कि एक शख्स ने कहा अगर मैंने यह गुलाम खरीदा तो यह आजाद है, फिर इसने उस गुलाम को खियार शर्त के साथ खरीद लिया, मुश्तरी ने खरीद लिया खियार शर्त के साथ, और साहिबैन का क्या मजहब है कि मुश्तरी खियार शर्त के साथ खरीदे तो मबिया उसकी मिल्क में दाखिल हो जाता है, लिहाजा मबिया मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो गया और साथ ही आजाद हो गया, साथ ही आजाद हो गया क्योंकि शर्त पाई गई, उसने खरीदा है और मिल्कियत भी इसकी आ चुकी है, लिहाजा गुलाम आजाद हो जाएगा। और नीज कहते हैं इमाम साहब के नजदीक भी आजाद हो जाएगा। भाई इमाम साहब के नजदीक कैसे आजाद होगा? इमाम साहब के नजदीक तो खियार शर्त अगर मुश्तरी रखे तो मुश्तरी के लिए मिल्कियत साबित ही नहीं होती। तो वो फरमाते हैं कि मबिया बाय की मिल्क से निकल चुका है, मबिया बाय की मिल्क से तो निकल चुका है, सिर्फ मुश्तरी की मिल्क अभी नहीं आई थी, लेकिन यहां इक्तेजान उसकी मिल्कियत आ जाएगी क्योंकि उसने तालीक की हुई है, तो ये तालीक के तकाजे की वजह से मिल्कियत आ जाएगी और साथ ही वो गुलाम आजाद हो जाएगा। भाई खियार शर्त किसने रखा है? मुश्तरी ने। इमाम साहब के नजदीक मुश्तरी भी मालिक नहीं, लेकिन यहां चूंकि उसने तालीक की हुई है लिहाजा इख्तेजान इख्तियार इस्तेमाल करने से पहले पहले ही मिल्कियत साबित हो जाएगी और यह गुलाम आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वकदालिक लौ काल अल मुश्तरी, और इसी तरह मसला होगा अगर मुश्तरी ने कहा इन इश्तरैतुहु फहुवा हुरुन, कि अगर मैंने इस गुलाम को खरीदा तो वह आजाद है, फश्तराहु अला अन्नहु बिल खियारी, फिर इसने उस गुलाम को खरीद लिया इस शर्त पर कि उसको खियार है, यातिकु ऐजन, तो इस सूरत में भी यह गुलाम आजाद हो जाएगा, लिअन्न शर्त कद तहक्कका, इसलिए क्योंकि शर्त जो है कद तहक्कका वो साबित हो गई, वह हुआ शिराउ और वो खरीदना है, वल मिल्कु काइमुन फीही, और मिल्कियत इसके अंदर कायम है, यानी मुश्तरी की मिल्कियत इसके अंदर कायम है, वहां दा अला असली हिमा जाहिरुन, और यह साहिबैन के जाब्ते पर तो जाहिर है, साहिबैन के नजदीक तो मबिया मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो चुका है, लिहाजा गुलाम आजाद हो गया। तो गुलाम की आजादी साहिबैन के जाब्ते पर तो जाहिर है। तो कहते हैं वहाद आला असली हिमा जाहिरुन, और ये मिल्कियत का होना साहिबैन के जाब्ते पर तो जाहिर है, वह कदा आला असली ही, और इसी तरह इमाम साहब के जाब्ते पर भी ये मिल्कियत साबित है, ये मिल्कियत इमाम साहब के जाब्ते पर भी साबित है और इक्तेजान साबित है, वरना तो इमाम साहब के नजदीक खियार शर्त मुश्तरी रखे तो मबिया उसकी मिल्क में दाखिल नहीं होता। तो कहते हैं वकदा अला असलिही, और इसी तरह इमाम साहब के साबते पर भी, यानी ये मिल्कियत साबित है, लिअन्न हादल इत्क बितालीक ही, इसलिए क्योंकि ये आजादी जो है उस मुश्तरी के मुअल्लक करने की वजह से है, वल मुअल्लक कल मुनज्जज़ी, और मुअल्लक भी मुनज्जस की तरह होता है। भाई मुअल्लक ये है एक चीज को किसी शर्त के साथ मुअल्लक कर देना, मसलन खावन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, यह है मुअल्लक तलाक, और एक है मुनज्जज, मुनज्जज यह है कि उसी वक्त उस चीज को पूरा कर देना, खावन बीवी को कहता है मैंने तुझे तलाक दे दी, तो यह मुनज्जज है, यह मुअल्लक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि मुअल्लक भी मुनज्जज की तरह है, भाई मुअल्लक भी मुनज्जज की तरह है, अगर यह मुश्तरी, तवज्जो से सुनो, अगर यह मुश्तरी खियार शर्त के साथ इस गुलाम को खरीदे, अभी तालीक वगैरह कोई नहीं की, मुश्तरी ने गुलाम खरीदा खियार शर्त के साथ कि 3 दिन तक मुझे इख्तियार है, और खरीदने के बाद मुश्तरी कहता है जाओ मेरी तरफ से तुम आजाद हो
जी।
तो याद रखो ये इताक मुनज्जज है, ये इताक मुनज्जज है, इसको वो मुअल्लक नहीं कर रहा, इसी वक्त उसको आजाद कर रहा है। तो याद रखो खियार शर्त के साथ भी मुश्तरी ने अगर गुलाम को खरीदा है तो वो उसको उसी वक्त आजाद कर सकता है, वो उसी वक्त उसको आजाद कर सकता है, गोया उसने अपनी बैन नाफिज कर दी, इसने तो इख्तियार रखा था ना कि मुझे 3 दिन तक का इख्तियार है, लेकिन जब इसने गुलाम आजाद कर दिया मालूम हुआ इसने अभी से बै की इजाजत दे दी कि बै हो गई, मैं बाद में फसख नहीं करूंगा। तो जब वो मुश्तरी जो खियार शर्त के साथ गुलाम को खरीदे, जब वो उस गुलाम के अंदर उस मुद्दत के अंदर अंदर मुनज्जज ए अताक को वाकिए कर सकता है, तो मुअल्लक एताक को भी उसमें वाकई कर सकता है। लिहाजा इसी मुश्तरी ने अगर यह कहकर गुलाम खरीदा है कि अगर मैंने इस गुलाम को खरीदा तो यह आजाद है, और फिर खियार शर्त के साथ मुश्तरी ने इस गुलाम को खरीदा, तो खरीदते ही यह गुलाम आजाद हो जाएगा, क्योंकि मुअल्लक भी किसकी तरह है, मुनज्जस की तरह है। जब शर्त पाई जाए, जब शर्त पाई जाए तो मुअल्लक भी उसी तरह वाकई हो जाता है जिस तरह मुनज्जस वाकई होता है, और खियार शर्त के साथ जब यह मुनज्जस एताक कर सकता है यह मुश्तरी, तो मुअल्लक एताक भी वाकई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्न हादल इत्क बितालीक ही, इसलिए क्योंकि यह आजादी मुश्तरी की तालीक करने की वजह से है। वल मुअल्लक कल मुनज्जस, और मुअल्लक जो है आजादी वो भी मुनज्जस आजादी की तरह होती है। वलव नज्जस अल इत्क यसबुतुल मिल्क साबिकन अलैही, अगर मुश्तरी जो है नज्जस अल इत्क, अगर वो आजादी को पूरा कर देता यानी वाकई कर देता, यसबुतुल मिल्क साबिकन अलैही, तो इस सूरत में भी मिल्कियत मुश्तरी के लिए साबित हो जाती। साबिकन अलैही, खियार पर मुकदम होकर पहले से ही इसके लिए मिल्कियत साबित हो जाती और एताक हो जाता। फकदा हादा, तो इसी तरह यह भी है यानी मुअल्लक के अंदर भी इसी तरह मिल्कियत मुकदम होकर साबित हो जाएगी और वह गुलाम आजाद हो जाएगा। आगे देखिए, वमन काल इल्लम अबी अहाद अल अब्दा औहाद हिल अमत फमरअतुहु तालिकुन। सूरत मसला ये, एक शख्स ने कहा अगर मैं इस गुलाम को या इस बांदी को न बेचूं तो मेरी बीवी को तलाक है, अगर मैं इस गुलाम को या इस बांदी को न बेचूं तो मेरी बीवी को तलाक है, और फिर इसने उस गुलाम या बांदी को आजाद कर दिया या इनको मुदब्बर बना दिया, तो फिर याद रखो इस सूरत में भी ये हानिस हो गया, बीवी को तलाक हो गई, क्योंकि इसने क्या कहा था, अगर मैं न बेचूं तो मेरी बीवी को तलाक, और जब इसने मुदब्बर बनाया या आजाद कर दिया तो अब बेचने की कोई सूरत न रही। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा इल्लम अबी अहाद अल अब्दा, कि अगर मैंने ये गुलाम न बेचा, औहाद हिल अमता, या मैंने इस बांदी को न बेचा, फमरअतुहु तालिकुन, तो उसकी बीवी को तलाक है, फअअतका औ दब्बरा, तो इसने उस गुलाम या बांदी को आजाद कर दिया, औ दब्बरा या मुदब्बर बना दिया, तुल्लिकत इमरअतुहु, तो इसकी बीवी को तलाक हो जाएगी, लिअन्न शर्त कद तहक्कका, इसलिए क्योंकि शर्त पाई गई। शर्त क्या थी, अगर मैं गुलाम या बांदी को न बेचूं तो अब शर्त पूरी हो गई क्योंकि बेचने का महल ही न रहा। भाई कहते हैं लिअन्न शर्त कद तहक्कका, इसलिए क्योंकि शर्त पाई गई, वह हुआ अदमुल बैय, और वो न बेचना है, लिफवाति महल्लियतिल बैय, बैय के महल होने के फौत हो जाने की वजह से, कि बैय का महल ही फौत हो गया। वह इदा कालतिल मरअतुली ज़ौजिहा तज़व्वजता अलैया फकाल कुल्लु मरअतिन लि तालिकुन सलासन तुल्लिकत हादिही अल्लती हल्लफत हु फिल क़ज़ा। सूरत मसला ये कि बीवी ने खावंद से कहा कि तूने मेरे ऊपर निकाह कर लिया है, तूने मेरे ऊपर, खावंद इनकार कर रहा है और बीवी कहती है तूने मेरे ऊपर निकाह कर लिया है, तू सौकन मेरे ऊपर ले आया है, तो खावंद कहता है कुल उम्रअतिन ली तालिकुन सलासन, मेरी हर बीवी को तीन तलाकें हैं जी। मेरी हर बीवी को तीन तलाकें हैं, तो इस सूरत में याद रखो इस औरत को भी तलाकें हो जाएंगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं कि नहीं, ये इस बीवी को राजी करने के लिए कह रहा है कि यानी तेरा अगर यह ख्याल है कि मैंने कोई और निकाह किया है तो तेरे अलावा मेरी हर बीवी को तीन तलाकें हैं, तो इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं इस वाली को तलाक नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसने जुमला कहा है कुल उम्रअतिन ली तालिकुन सलासन, ये उस औरत के सवाल के जवाब में कहा है, और जवाब हमेशा सवाल के मुताबिक होता है, तो लिहाजा यहां पर भी इस औरत के अलावा और औरतों की तलाक मुराद होगी। जबकि जाहिर रिवायत के मुताबिक इस बीवी को भी तलाक हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कुल्लु मरअतिन ली, कुल्लु का लफ्ज लेकर आया है। तो कहते हैं वइदा कालतिल मरअतु लिज़ौजिहा, और जिस वक्त बीवी ने अपने खावन से कहा तज़व्वजता अलैया, कि तूने मेरे ऊपर निकाह कर लिया है, फकाला, तो खावन ने कहा कुल्लु मरअतिन ली तालिकुन सलासन, कि मेरी हर बीवी को तीन तलाकें हैं, तो तुल्लिकत हादिही अल्लती हल्लफत हु फिल क़ज़ाई, तो तलाक हो जाएगी इस बीवी को भी जिसने इसे कसम खिलवाई है, फिल क़ज़ाई, क़ज़ा के अंदर, तो इस बीवी को भी तलाक हो जाएगी कजा के अंदर। वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह अन्नहा ला तुतल्लकु, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है कि इस बीवी को तलाक नहीं होगी, लिअन्नहु अखरजहु जवाबन, इसलिए क्योंकि इसने इस कलाम को निकाला है बतौर जवाब के, یہ یوں ترجمہ کر لیں, لئنہ اخرجہ جوابا, اس لیے کیونکہ اس شخص نے یہ کلام ادا کیا ہے بطور جواب کے, فینطبق علیہ, تو یہ کلام جو ہے اس سوال کے مطابق ہوگا, ولئن غرضہ ارضاؤها, اور نیز اس لیے کیونکہ خاوند کا مقصد جو ہے ارضاؤها, اس بیوی کو راضی کرنا ہے, وہ بطلاق غیرہا, اور وہ تو اس کے علاوہ دوسری کی طلاق کے ذریعے ہوگا, اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تو دوسری کے طلاق سے یہ راضی ہوگی, خود اپنی طلاق سے تو راضی نہیں ہوگی, لہذا دوسری کی طلاق مراد لیں گے, فیتقید بہ, لہذا اس کی یہ قسم جو ہے مقید ہو جائے گی غیر کی طلاق کے ساتھ. اس نے کہا تو یہ ہے کل امرأت لی طالق ثلاثن, لیکن یوں سمجھو اس نے یوں کہا ہے کل امرأت لی غیری کی طالق ثلاثن, تیرے علاوہ میری جو بھی بیوی ہے اس کو تین طلاقیں ہیں, تو یہ جواب کو ہم سوال کے مطابق کر دیں گے بھائی. تو یہ معنی ہے, کہتے ہیں ولی ان غرضہ ارضاؤها, اس لیے کیونکہ خاوند کا مقصد اس بیوی کو راضی کرنا ہے, وہ بھی طلاق غیرہا, اور اس کا راضی کرنا دوسری کے طلاق سے ہوگا, فیتقید بہ, لہذا اس کا کلام اس کے ساتھ مقید ہوگا, یعنی اس کے علاوہ اور بیوی کی طلاق کے ساتھ اس کا کلام مقید ہوگا, ووجہ الظاہری, اور ظاہر روایت کی وجہ, بھائی متن میں تو آیا تھا اس کو بھی طلاق ہو جائے گی, اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں ووجہ الظاہری, ظاہر روایت کی وجہ جو ہے عموم الکلامی, وہ اس کلام کا عام ہونا ہے, اس نے کیا کہا ہے کل امرأت لی, کلو کا لفظ لے کر آیا ہے, تو لہذا اب اس کو ہم جواب قرار نہیں دے سکتے, یہ گویا وہ ایک الگ کلام کر رہا ہے, اگر جواب دینا ہوتا تو کلن کا لفظ نہ لے کر آتا بھائی. تو کہتے ہیں ووجہ الظاہری, ظاہر روایت کی وجہ جو ہے عموم الکلامی, کلام کا عام ہونا ہے, وقد زاد علی حرف الجوابی, اور تحقیق اس شخص نے جواب کے کنارے پر بڑھا دیا, یا یوں کہیں وقد زاد علی حرف الجوابی, اس شخص نے اصل جواب پر بڑھا دیا کلام کو, فیجعل مبتدی ان, تو اس قسم کھانے والے کو مبتدی قرار دیا جائے گا, یعنی نیا کلام کرنے والا, مبتدی ابتدا کرنے والا, تو اس کو جواب دینے والا نہیں قرار دیں گے بلکہ مبتدی یعنی نیا کلام کرنے والا ہے یہ, فیجعل مبتدی ان, تو اس کو نیا کلام کرنے والا قرار دیا جائے گا, وقد یکون غرضہ احاشہ حین اعترضت علیہ فیما احلہ الشرع. اچھا, امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو اس نے جواب ذکر کیا ہے اس کا مقصد بیوی کو راضی کرنا ہے, تو کہتے ہیں بھائی کبھی ہو سکتا ہے اس کا مقصد بیوی کو راضی کرنا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد بیوی کو اور زیادہ وحشت زدہ اور پریشان کرنا ہے, کیونکہ بیوی نے اس پر ایک ایسی چیز میں اعتراض کیا ہے جس کی اس کو شریعت نے اجازت دی تھی, شریعت نے تو اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی تھی, تو اس بیوی نے اس پر اعتراض کیا, تو یہ لہذا یہ اب اس کو اور وحشت زدہ اور پریشان کرنا چاہتا ہے, لہذا اس کو بھی طلاق وہ دے رہا ہے, اس کو بھی وہ طلاق دے رہا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس کا مقصد اس بیوی کو راضی کرنا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, ہو سکتا ہے راضی کرنا مقصد ہو اور ہو سکتا ہے اس کو اور زیادہ وحشت زدہ کرنا مقصد ہو, دونوں مقصد ہو سکتے ہیں, جب مقصد کے اندر تردد آ گیا لہذا اب اس کو اس قسم کو غیر کے ساتھ مقید ہم نہیں کر سکتے بھائی. تو کہتے ہیں وقد یکون غرضہ احاشہ, اور کبھی کبھار اس کی غرض جو ہے احاشہ, اس عورت کو وحشت زدہ کرنا ہے, حین اعترضت علیہ, جس وقت کی اس عورت نے اعتراض کیا اس خاوند پر, فیما احلہ الشرع, اس چیز کے اندر جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے, ومع التردد لا یصلح مقیدا, اور تردد کے ساتھ تو یہ کلام مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. امام یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, یہ اس بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یہاں یہ بھی احتمال ہے, یہ اس بیوی کو اور زیادہ وحشت زدہ کرنا چاہتا ہے, تو جب تردد آ گیا مقصد کے اندر کہ پتہ نہیں کیا مقصد ہے, تو اس کی وجہ سے اب اس طلاق کو اس بیوی کے علاوہ اور بیویوں کی طلاق کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا. یہ معنی ہے وہ مع تردد لا یصلح مقیدا, اور تردد کے ہوتے ہوئے یہ کلام جو ہے مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ غیر کی طلاق کے ساتھ اس کو مقید کر دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یاد رکھو میں نے اس کو پڑھا مقیدن, شارحین نے اس کو مقید لکھا ہے, اس میں فاعل مقید, لیکن مقید پڑھا جائے تو کوئی معنی صحیح نہیں بنتا, یہ کلام مقید نہیں ہے مقید ہے, यह कलाम खुद क्या बन जाएगा, मुकैद बनेगा। मुकैद नहीं कि किसी और में कैद बना दे। बात समझ में आ गई। तो बहरहाल यहां शारहीन ने मुकैद लिखा है, लेकिन उस सूरत में कोई माना मेरे जहन में तो कम अज कम नहीं आया कि किस तरह दुरुस्त माना हो सकता है। तो कहते हैं वमा तरद्दुदी ला यस्लुहु मुकैदन, और तरद्दुद के साथ ये मुकैद होने की सलाहियत नहीं रखता। व इन नवा गैरहा युसद्दकु दियानतन, और अगर इसने किसी और बीवी की नीयत की तो युसद्दकु दियानतन ला कजाअन, तो दियानतन इसकी तस्दीक की जाएगी। ये शख्स बाद में कहते हैं मैंने तो इसकी नीयत नहीं की थी, मैंने तो इसके अलावा और बीवियों की नीयत की थी, तो दियानतन तो तस्दीक की जाएगी लेकिन कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि इसने आम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं भाई। तो कहते हैं वह इन नवा गई रहा, और अगर इसने इस बीवी के अलावा और बीवियों की नीयत की, यु सदकु दियानतन ला कजाअन, तो दियानतन इसकी तस्दीक की जाएगी न कि कजाअन। ले अन्नहु तख्सीसुल आमी, इसलिए क्योंकि यह आम की तख्सीस है, यह आम के अंदर खसूस की नीयत कर रहा है। और आप पढ़ चुके हैं आम के अंदर खसूस की नीयत जायज है। अल्फाज तो आम जिक्र किए और इरादा खास का किया, यानी इस बीवी के अलावा बीवियों का, तो लिहाजा आम के अंदर खास की नीयत की जाए तो दयानतन तस्दीक की जाती है, लेकिन कजाअन तस्दीक नहीं की जाती क्योंकि वह जाहिर के खिलाफ है। जाहिर तो यही है, इसने आम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो सब बीवियों को वो गोया तीन तलाकें दे रहा है। बात समझ में आ गई भाई। यहां एक और कीमती बात याद रखिए, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में इस बीवी को तलाक नहीं होगी क्योंकि इसका मकसद इस बीवी को राजी करना है, और जाहिर रिवायत से पता चला कि तलाक हो जाएगी क्योंकि तरद्दुद आ गया कि वो राजी करना चाहता है या और ज्यादा वहशत ज्यादा करना चाहता है। तो बाज किबार फुकहा और उलमा ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल को तरजीह दी है, जैसे इमाम सरखसी रहमतुल्लाह हैं, इसी तरह और बाज बड़े फुकाहा हैं, उन्होंने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल को तरजीह दी है कि इस सूरत में और बीवियों को तलाक होगी, इस बीवी को तलाक नहीं होगी। और जबकि बाज उलमा ने इन कौलों में तत्बीक दी, इमाम अबू यूसुफ और जाहिर रिवायत में तत्बीक दी कि अगर यह कलाम करते हुए वो गुस्से में है तो फिर इसका मतलब है कि वो इसको भी तलाक देना चाहता है, और अगर वो गुस्से में नहीं है मालूम हो वो इस बीवी को राजी करना चाहता है, तो इस सूरत में और बीवियां मुराद होंगी, ये वाली बीवी मुराद नहीं होगी। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।